अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपसे मुझसे राज़ी हो और बेहतरीन तरीके से हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा भी करें और फिर इसके ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए हमारा अमल हो जाए। ये बहुत ही खूबसूरत दिन होते हैं साल के। वाकई जो अहादीस मिलती हैं कि इसके लिए जन्नत सजाई जाती है, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि हमारे भी पास बहुत कुछ होता है इसके लिए। और जब इंसान उसको प्रेजेंट करता है, जब वो किसी दूसरे के साथ शेयर करता है, तो जो खुशी दिल में आती है उसका अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकता है जो इस पूरी दावत का हिस्सा होता है। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं आफियत की आप सबके लिए, और अपने समेत आप सबके लिए दुआ करूंगी कि हमें पूरे वक्त में कोई भी चीज़ इस मकसद से ना हटाए। तो आइए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक से हम दौरे कुरान 2020 इस सिलसिले का आज 6th पारा शुरू करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ये मेरी और आपकी हिदायत का जरिया बने और हमें हुदातम मोहतदीन में शामिल कर ले। यानी सिर्फ हिदायत से हटे हुए लोग ही नहीं, बल्कि हिदायत पर कायम और हिदायत की तरफ बुलाने वाले भी हमसे फ़ायदा ले लें। पिछला पारा ख़त्म करते ही मैं अगले पारे के ख्वाब देखने लगती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इनको पता भी नहीं कि कल क्या मिलने वाला है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए ये बात कर दी कि फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने क्या तैयार किया। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिस शौक और मोहब्बत से हम इस किताब को सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं, यही शौक और ज़ौक तू हमें जन्नत का भी लगा दे। कुछ बातें पारे के बारे में, और ख़ास तौर पे वो बातें कि जो आपके मेरे लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं। हर पारे की तरह ये पारा भी अहम है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसमें सूरत अल माईदा का वो हिस्सा है कि जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा जाता है। क्यों? इसलिए कि ईमान वालों को जब रब पुकारे तो फिर उस खुशी का क्या आलम होगा। और सबसे ज़्यादा इसे एक सूरत में मिलता है हमें, तो गोया कि आप कह लीजिए कि यह आपकी मेरी सूरत है। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा से एक कौल मंसूब किया जाता है कि लोगों, सूरत माईदा को गौर से सुनो, क्योंकि इसका कोई हुक्म मनसूख नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम थे, उस दौर की यह सूरत है। तो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी गाइडलाइन होगी, और इस सूरत को पढ़ के तो ख़ास तौर पे लगता है कि जो लोग सिर्फ कुरान बाय कुरान पढ़ते हैं, इसकी तिलावत कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे अपनी दोस्तों के साथ बैठकर, वो तो इसकी रूह को पा नहीं सकते। तो इस पारे को हम अल्लाह ताला की तौफीक से जिस थीम पर आज समझने की कोशिश करेंगे, वो है जाहिलियत का फितना। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिन अल्लाही हुक्मल लिकौमी यूकिनून। क्या ये ज़माना जाहिलियत के हुक्म के ख्वाहिशमंद हैं? और जो यकीन रखते हैं, इनके लिए अल्लाह से अच्छा हुक्म किसका है? आयत नंबर 50 है सूरत माईदा की। हम इसमें जब पहुँचेंगे तो देखेंगे कि ये पारा किस तरीके से जाहिलियत के मौजू को कवर करता है। मसलन पारे की पहली ही आयत में दूसरों की बुराइयाँ बयान करना, ये जाहिलियत है। फिर इसी तरह से अल्लाह और उसके रसूलों के बीच में फ़र्क बयान कर देना, ये जहालत है। जहालत होती क्या है? इस्लाम से माकबल के ज़माने को जाहिलियत कहते हैं। कोई भी शख्स जाहिल रहना पसंद नहीं करता। अमूमन दुनिया में जाहिल उसको कहते हैं जो दुनियावी तालीम हासिल ना करे। ये किसी हद तक बिल्कुल सच है, क्योंकि जो दुनिया को नहीं जानते ना, उनको दीन का भी जानने का शौक़ नहीं है। इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला उनका हिसाब भी आसान ही रखेगा। लेकिन जो दुनिया का पढ़ जाता है, फिर उसको दीन का शौक भी लग जाता है। एक वो जहालत होती है जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल। वो पढ़े लिखे जाहिल जो है ना, वो हैं असल में आज के इस पूरे पारे का मेन थीम। और ये मेरा अल्लाह ताला से बहुत बड़ा गुमान है कि अगर आपने ये पूरा पारा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन बैठ कर सुन लिया, और साथ ही साथ इसके अपने अमल के नुक्ते नोट करते गए, तो ज़रूर इसके बाद आप ये कहेंगे, रब्बी जिदनी इल्मा, के अल्लाह मुझे इल्म दे, और इल्म में से भी कौन सा, वो इल्म जो मुझे नफ़ा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, क्योंकि इल्म तो बहुत सारे हैं लेकिन नफ़े वाला इल्म लेना असल में ये है वो काम जो आज करने की ज़रूरत है। तो हम इस बारे में, इस थीम के तहत के अल्लाह हमने तो जाहिल नहीं रहना, एक दुआ सीखेंगे। और आज की आपकी दुआ भी कुरान पाक की दुआओं में से ही है। और इसके बारे में एक और खूबसूरत चीज़ नोट कर लें कि पहली दुआ सूरत अल फातिहा के बाद जो अल्लाह ताला ने दी थी हम सबको, वो क्या थी, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूँ। सूरत बकरा 67 है। बनी इसराइल से वास्ता पड़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का, हर बात पे सवाल जवाब, हर बात पे सरापा एहतजाज। और जब ऐसी स्टबन कौम किसी नबी को मिल जाए और फिर उसके बाद हर बात की वजह और उसकी हकीकत मालूम करने का शौक लग जाए, तो फिर गाय के वाके में जब के कौम को कहा गया कि गाय को ज़िबह कीजिए, तो उनको लगा कि क्या तुम इस बात का हुक्म दे रहे हो कि हम अपने खुदा को ज़िबह कर दें, ये स्टाइल था। तो उस पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं इस अल्लाह की पनाह में आता हूँ। क्या पता चला कि जहालत से पनाह मांगनी चाहिए। ज़रा एक छोटा सा सवाल तो करिए अपने आप से कि आज तक शऊर से मैंने अपनी दुनियावी इलूम से पीछे रहना और दीनी इल्म से पीछे रहना, क्या इसकी दुआ भी की? अल्लाह ताला आपको मुझे अपना मुहासबा करने वाला बना दे। तो इंशाअल्लाह ताला इस दुआ को याद भी करेंगे और जहालत से निकलने के लिए कोशिश भी करेंगे। क्या करेंगे? इल्म हासिल करेंगे। तो आज की हमारी हदीस इब्ने माजा 243 इल्म ही के बारे में है। आपने फरमाया, सबसे बेहतर और अफजल सदका ये है कि कोई मुसलमान इल्मे दीन सीखे फिर इसे अपने मुसलमान भाई को सिखाए। तो इंशाल्लाह सीखना है और फिर सिखाना है। और जितना ज़्यादा आप और मैं इस चीज़ के ऊपर अपने दिल को बांधते जाएंगे ना, उतनी हमारी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और दिल की खुशी आएगी। बहुत सारी चीज़ें इंसान हासिल करना चाहता है कि खुशी मिले, यानी ज़िंदगी को लग्जरियस बनाना चाहता है, लेकिन एंड पे घर तो स्टोरेज बन जाता है लेकिन खुशी नहीं आती। सच्ची खुशी इल्म के साथ मिलेगी, क्योंकि इल्म वाले ही कल के दाई हो गए, और जिनके लिए अल्लाह ताला ने वमन अहसनु कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाह की बात की। तो हमने इंशाल्लाह इल्म को आम करना है, मुआशरे के अंधेरों को दूर करना है। हो इल्म की शम्मा से मुझको मोहब्बत हुदाया, इस दुआ को शऊर के साथ मांगना है। और जितना ज़्यादा आपकी मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आती जाएगी, आप महसूस करते जाएंगे ला मुहाला आप इल्म वाले बन चुके होंगे। तो आइए ज़रा पारे की हाइलाइट्स देखते हैं। और इस वक्त ये सब चीज़ें आपसे क्यों शेयर की जा रही हैं, ताकि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि इस पारे को सुनने के दौरान मैंने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो इस बारे में हम जो कुछ सीखेंगे उसमें क्या है कि ज़ाहिर और बातिन में भलाई के काम करना। देखिए कितना बड़ा काम है, अगर हम ये आज सीख गए तो हमारे आमाल महफूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम अमूमन ज़ाहरी तौर पे तो अच्छे काम करते हैं लेकिन अंदर के हाल अल्लाह ही जाने। फिर इसी तरह हम सीखेंगे कि इल्म में पुख्तगी पैदा करनी है। अभी हमारा इल्म अधूरा है, अभी हमारा इल्म रसूख के दर्जे पे नहीं पहुंचा, और अभी हमारा इल्म अमल में नहीं ढला, अभी हमारा शरह सदर नहीं हुआ, अभी जुबान की गिरहें नहीं खुली। तो लेते जाएंगे अपने लिए जैम बना लें बेशक, कि जब मेरा अंदर सेचुरेटेड होगा तो ये हो नहीं सकता कि मैं फिर वो शेयर ना करूं। तो इस इल्म को छुपाना नहीं, बढ़ाकर फिर इसको बांटना है। फिर अगली चीज़ हम सीखेंगे कि अल्लाह की तरफ बुलाते हुए लोगों को खुशखबरियां देनी है और तंबीहात करना है। बाज़ दफ़ा हम अधूरे इल्म के साथ जब काम करते हैं ना, तो पहले ही दिन अगले लोगों को जहन्नम की बातें सुना के आते हैं, तो ये कच्चे इल्म की निशानी होती है। बच्चों को भी हम इसी तरह डराते हैं, अल्लाह मारेगा, क्यों मारेगा उन मासूमों को। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की गुलामी इख्तियार करना सीखना है। या का नाबुदू या का नस्ताइन से इसकी कोशिशों में है, शायद इस पारे को पढ़ने के बाद बंदगी का रंग हम पे आने लगे। फिर इसी तरह माहदात की पाबंदी करना है। सूरत मायदा का तो नाम ही अल-उकूद भी है। तो मोमिन की ज़िंदगी तो एक पाबंद ज़िंदगी होती है, तो हमने अपनी कमिटमेंट्स को भी निभाना है, और हमने ये भी देखना है कि जब हम इंसानों से किसी बात की कमिटमेंट करें तो फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला हम मुसलमानों को आज इसका पाबंद बना दे। फिर इसके बाद हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना सीखेंगे, इसलिए कि नापाक चीज़ और गंदी चीज़ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ज़िंदगी पाकीज़ा कब होती है, इंशाल्लाह सूरत मायदा की आयत 6 से ही हमें समझ आ जाएगा। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के लिए हक और इंसाफ पर कायम रहने वाला बनना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। आप देखिए कि पूरे कुरान को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी बिस्मिल्लाह, और वो क्या है कि इस दुनिया में हक के साथ जीना है और हक के साथ मरना है, और अल्लाह ताला की ज़ात अल हक है और आज उसका दीन हक है। इस हक के रास्ते को छोड़कर बातिल ख्वाहिशात बातिल परस्ती की तरफ जाना ये नाकदरी करना है, जबकि अल्लाह ने आपको मुझे एक मुसलमान माँ और एक मुसलमान बाप के घर में पैदा कर दिया। बड़े ही बदनसीब होंगे वो मुसलमान बच्चे जो सारा कुछ होने के बावजूद जन्नत में ना जा सकें या फिर देर से पहुँचें। तो हक के लिए जान लगाइए, अच्छी बातें करने लिए बहुत है दुनिया में, ये देख लीजिए कि हक की बात है भी कि नहीं, क्योंकि हक को आप लुकनत भरी जुबान से भी वक्त के फिरौन के सामने पेश कर दें, अल्लाह ताला उसको भी कबूल करता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि अपने आप को खुद हक पर रखें और ख़ास तौर पे फिर इंसाफ पर भी कायम रखना है। फिर इसी तरह रसूलों की मदद कैसे की गई और आज हमने भी आज के दौर में काम ये कैसे करना है ये सीखेंगे, तकवा की ज़िंदगी गुजारना सीखेंगे। अल्लाह करे कि ये तकवा भी आज हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो ही जाए। इसी तरह अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया तलाश करना, यानी वसीले की क्या हकीकत है, वो भी सूरत मायदा की आयत 35 में देखेंगे। भलाइयों में सबकत ले जाना कैसे है, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखना सीखेंगे, और अहले ईमान के मुकाबले में नरम रवैया रखना और कुफार के साथ रवैये को यानी असूलों को सख्त रखना सीखेंगे। तो एक समंदर है जिसको पीने की कोशिश है, अल्लाह से दुआ के साथ शुरू करते हैं। सूरत निसा 148 से ये पारा शुरू होता है और सूरत मायदा पे जाकर पूरा होगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता मगर मज़लूम को इजाज़त है, और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला है और पूरी कुदरत वाला है। जो लोग अल्लाह के साथ और इसके पैगम्बरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखें, और जो लोग कहते हैं कि बास नबियों पर तो हमारा ईमान है और बास पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके दरमियान राह निकालें, यकीन मानो ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने इहानत में सजा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और इसके तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते हैं, इनको अल्लाह ताला पूरा सवाब देगा, और अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। क्या देखा हमने इन आयात में, असरे हाजर के दो फितने, फितना इनकार हदीस जिसको फितना वहदत अदियान भी कहते हैं, और दूसरा जुबान के फितने। अबू दाऊद की एक रिवायत 163, खबरदार अनकरीब एक शिकम सिर यानी जिसका पेट भरा होगा, आदमी अपने मुजैन और आरास्ता पलंग या सोफे पर बैठकर कहेगा कि तुम पर इस कुरान का इत्तबा फर्ज है। मुराद है कि हदीस को छोड़ दो, सिर्फ कुरान काफी है, इसमें जो हलाल है तुम इसे हलाल जानो और जो इसमें हराम है तुम इसे हराम जानो। तो जाहिलियत कब पैदा होती है, जब लोग कुरान को अपनी अकल से और डिक्शनरी से और तजवीद के रूल्स के साथ तो पढ़ें और सीखें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हदीस से काटते। तो इस हिस्से में कुछ जाहिलाना रवैये हैं जिसमें पहली आयत पे बात करूंगी, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू। तो पहला रवैया क्या है कि दूसरों की बुराइयों को नशर करना, ये एक जाहिलाना रवैया। अल्लाह ताला ने आपको मुझे मुख्तलिफ आज़ाद दिए हैं बॉडी ऑर्गन्स, और उनके काम भी हैं मुख्तलिफ किस्म के, इसी में से एक जुबान है। घर में एक छुरी होती है, उसको भी शायद लोग मुख्तात तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन बास लोग जुबान का इस्तेमाल बहुत ही बेजा और गलत तरीके से करते हैं। कौल की बात है, स्पीच की बात है और गुफ्तगू है, याद रखिए कि गुफ्तगू और कॉल और बातें और स्पीच इंसान की शख्सियत की आईनादार होती हैं। ख्यालात ही अल्फाज का रूप धारते हैं और फिर बाहर कानों पर टकराते हैं। कुछ की बातें तो ऐसी होती हैं कि सुनते ही जाइए और फूल बिखरते ही जाएं, लेकिन कुछ लोग कुन छुरियां बनकर मुआशरे में मॉरल पोल्यूशन फैलाते हैं। जब आप कलाम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उस मुआशरे में अनारकी फैलेगी, नफरत होगी, भाई भाई से कटेगा, सास बहू के खिलाफ बोलेगी, और ये बदखुई एक ऐसी दो धारी तलवार है कि कहने वाले को भी जख्मी करती है और सुनने वाले को भी जख्मी करती है। इसी जुबान से आप और मैं खैर भी कमा सकते हैं और शर भी कमा सकते हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए ये कभी हो नहीं सकता कि नंबर एक हमें किसी का कोई ऐब ना दिखे, और दूसरी बात है कि साथ रहते हुए कि ऊंच नीच ना हो जाए। ये दो बातें जहन में रख लीजिए। अल्लाह सुबहाना ताला इधर यही फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहु, पहला लफ्ज ही हर उस बंदे के दिल को हिला देगा जिसको वाकई अल्लाह से प्यार है, क्योंकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे ना कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत ना करें, तो अल्लाह को क्या नहीं पसंद? अलजहर नहीं पसंद, मुजाहरा। ये वो चीज़ें होती हैं जो माशरे का सुकून ख़त्म करती हैं। मसलन सियासतदान हों तो एक दूसरे के खिलाफ, मजहबी रहनुमा हों तो वो एक दूसरे के खिलाफ, डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर्स के खिलाफ। अगर हर वक्त बुराइयां ही खोलते रहेंगे और पुकार पुकार कर एक दूसरे की बातें करेंगे, कल के दौर में तो लोग खुद जाकर करते थे, आज एक छोटी सी वीडियो बना के वायरल कर देंगे, मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट कर देंगे, लोगों को दूसरों से बदगुमान कर देंगे। तो याद रखिए वो माशरे कभी नहीं पनपते। जिस अदालत में साथ काम करने वाले हर वक्त दूसरे के साथ बदगुमान हो, ब्लैक पुलिंग हो, बदगोइयां हो, घंटों बातें करके ये कहा और सुना जाए कि मेरे पे क्या ज्यादती हुई और मैंने किस पे क्या नहीं किया, तो बताइए उधर दूसरे केसेस कौन लड़ेगा? बस सफा होता क्या है कि हम बहुत अच्छी कॉज के लिए भी जमा होते हैं, लेकिन आपस के झगड़े बरकत को खत्म कर देते हैं। आप कैसे डॉक्टर्स हैं कि आप दूसरों का इलाज करें? अगर आप आपस में एक दूसरे की नब्जें टटोलते रहें तो जिंदगी का एक असूल बनाइए। इंसान खता का पुतला है, इंसान से इंसान के हक में कुताही होगी, और अल्लाह की बारगाह में नाफरमानियां होती हैं, रात दिन गुनाह होते हैं, लेकिन गुनाहों के बाद इन पर शर्मिंदा होना, तौबा करना, ये बंदे मोमिन की शान है। और हकीकत यह है कि इसी जुबान से तौबा होती है और इसी जुबान से बदगुइयां होती हैं। लेकिन कहाँ इंसान फख्र करे और अपने गुनाहों की खुल्लम खुला तशखीर कर दे, ये गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत ही प्यारी है, आजकल मुझे कसरत से याद आती है जब इर्द गिर्द इस तरह से लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हुए नजर आए और नज़र पड़ जाए। और वो क्या था कि आदमी रात को गुनाह करेगा और अल्लाह रात के पर्दे में उसके गुनाह को छुपा देगा, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर वो खुद अपना गुनाह नुमाया करेगा। ज़रा सोचिएगा कि आज के दौर में इसकी क्या कैफियत है। हम तो एक पिज़्ज़ा भी खाते हैं तो उसकी भी तस्वीरें शेयर करते हैं, कहाँ गए, क्या किया, क्या पहना, उनको भी वो चीज़ें दिखा देते हैं जो कभी ऐसी महफिलों में गए भी ना हो। तो ज़रूरत इस बात की कि दिलों को खुला रखा जाए। दिल बड़ा रखिए, जुबान छोटी, ये जेम शायद आज से 20 साल से देते आ रहे हैं लोगों को कि घर बसाने हैं, इदारे चलाने हैं, उम्मत बनना है, इंसानियत के लिए कुछ काम करना है। दिल बड़े रख लीजिए, जुबानें छोटी कर लीजिए, देखिएगा फॉरगिव फॉरगेट, इग्नोर ग्रेसफुली, किल विथ काइंडनेस, ये स्लोगन है मेरे पास तो बस। और इसी की बुनियाद पे देखिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी साथी दिए हैं वो भी ऐसे ही हैं। मकसद पे नजर हो तो आप छोटी छोटी बातों पे नजर नहीं रखते। बच्चों की आदत होती है, आप देखिए मुझे उसने ये कह दिया, मेरी उसने पेंसिल ले ली, स्कूल से भी रोते हुए ही आते हैं, बस्ते को हाथ लगा दे कोई चीखते हैं, अल्लाह के बंदो छोड़ो, कॉज को देखो, मकसद को देखो, अल्लाह तुमसे काम क्या ले रहा है, एक बंदा हिदायत पा जाए कितने सुर्ख ऊंटों से बेहतर। तो लिहाजा मकसद पे नजर रखनी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने बददुआ कर दी उसने हक ले लिया। एक शख्स सिर्फ किसी की ज्यादती को पेश कर सकता है और वो मजलूम है। अब हम कहेंगे हम तो शुरू के मजलूम है, कुछ लोग तो पैदा ही मजलूमियत में हुए और दुनिया से जाते हुए भी मजलूम है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं तुम्हें फौरन नहीं पकड़ता तो तुम क्यों लोगों को फौरन पकड़ते हो? तुम तो किसी का बोला एक लफ्ज लेकर आगे ऐसे जाते हो कि तुम किरामन कातिबीन की भी कल गलतियां निकालोगे, और तुम सिर्फ उस लफ्ज पे उस बंदे को सारी जिंदगी की नेकियों बदियों कोई फैसला चाहोगे। अल्लाह तो ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हें ला युआखिज़ुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम कहता है, तो याद रखिए, लोगों की खताओं पे खामोश रहिए, गलतियां ना पकड़िए, बुराइयां ना पकड़िए। किसी की अगर कोई गलत चीज दिखे, बड़े प्यारे तरीके से, मुहज्जब अंदाज से डायरेक्ट उस तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिए कि उसको बुराई या उसकी वो कमी बताते हुए खुद ना कोई बुराई कर दे। बस आप देखिए, मैं इसको एक मिसाल से समझाती हूँ कि व्हाइट कलर का टेबल है आपके पास, उस पर कुछ चीजें लग गई, खाना गिर गया या इंक गिर गई, कोई भी कचरा आ गया उस पर। आप वहां से एक और साफ सुथरा कपड़ा लाते हैं, साफ करेंगे, फौरन साफ हो जाएगा। लेकिन अगर टेबल को साफ करते हुए उससे भी गंदे कपड़े को लाकर फेरेंगे ना, तो पहले सिर्फ इंक थी, आप पता नहीं उस पर सालन का और तेल के धब्बे भी पड़ेंगे। हम कुछ इसी किस्म के तरीके अख्तियार करते हैं, चाहे वो दीनी रहनुमाओं की गलतियां निकालना हो, बड़े बड़े मेंबरों पे आकर दूसरे मसलक के किसी शख्स को पेश करना हो। बात नरम कीजिए, खामोश रहिए, देखिएगा अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह उसकी खराबी दूर कर दे, अगर उसमें कोई कमी है तो सही कर दे, अल्लाह ताला खुद ब खुद करेगा। तो जुमला लिखिएगा, हमारा जिहाद जुबान का जिहाद है। दिल मचलेगा, हाय ये बात करूं, हाय इसको, चुटकी काटे अंदर गुदगुदी होती है, हाय नहीं ताना दूं मैं भी बोलूं, मगर मैंने नहीं बोलना। चलिए एक जुमला लिखते हैं, चुप का रोजा भी रखिए पेट के रोजे रखने के साथ। आज हमारी हिजरत यही है कि हम अपनी जुबान की हिजरत करवा लें हर उस बात से जो लोगों के दिल तोड़े, और हर बात करने से पहले 1 मिनट जरूर सोचिए। चले मिनट तो छोड़िए, हम तो परेशान हो जाए उस उतनी देर में तो हमने कितने तीर तानों के छोड़ देने थे, कौन मिनट, 10 सेकंड, ये बात करूं कि ना करूं, करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या ये बहुत अच्छी खबर है जो मैं ही दूसरे को सुनाऊं, क्या ये बहुत प्यारी वीडियो है कि जो मेरे ही जरिए मेरी दोस्तें देखें और हंसे और मुझसे पहले कोई कर चुका होगा। यकीन कीजिए, सिर्फ इन चंद जुमलों पे गौर कर लीजिए, आपका जिसको कहते हैं मेल बॉक्स भी नहीं भरेगा और आपकी जुबान भी गुनाहों से नहीं भरेगी। तो अपने गुनाह या दूसरों के गुनाह, उनको छुपाइए, क्योंकि अल्लाह ताला भी सत्तारुल उयूब है। क्योंकि बाज दफा जब हम फिर बुराइयों की दावत देते हैं, वो हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह सूरत नूर में, बदतरीन लोग हैं जो तशी अल फाहिशा का काम करते हैं, मुआशरे में गुनाहों का आम करना। अल्लाह ने उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरियां दी हैं। फिर इसी तरह से याद रखिए कि जिस कौम में फहाशी एलानिया जाहिर हो जाती है, तो आपने फरमाया कि वहां ताउन और ऐसी बीमारियां फैलने लगती हैं जिनसे पहले के लोगों में कभी सुनी भी ना हो गई हो। तो अल्लाह ताला आपको मुझे खैर के साथ रखे, इस जुबान की हिफाजत कीजिए, इसी से आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इसी से आपने एक औरत को अपने लिए हलाल किया कबूलियत के अल्फाज के साथ। तो जुबान इंसान की जिंदगी के हर मोड़ पे बड़ी अहम है। बड़े कहते थे कि जुबान शीरी, दिल गिरी या मुल्क गिरी, जिसकी जुबान मीठी होती है सारा मुल्क उसका दिलगिरी करने वाला बनता है, यानी लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। कभी दोस्तों की महफिल में याद आ जाए ये मेरी चंद बातें तो फिर नोट कर लीजिए, ठट्ठे मजाक हंसी, किसी एक दोस्त का मजाक उड़ाना, किसी की गलती के ऊपर और ज्यादा उसको शर्मिंदा करना, ये चीज दुरुस्त नहीं है। ट्रैश की बात करके आगे चलती हूँ, घर के अंदर खाना पकता है, फ्रेश फ्रेश सब्जी कटती है, फ्रूट चाट बनते हुए फ्रूट के छिलके गिरते हैं, उस वक्त तो वो बिल्कुल खराब नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है जब आप उसको ट्रैश करते हैं, बिन में डालते हैं, और अगर 1-2 घंटा छोड़ दें, और अल्लाह ना करे कि कोई ओवर नाइट छोड़ दे, सारे घर में बसांद है। ट्रैश के लिए मेरा आपका अमल क्या है, फौरन टाई अप इट एंड थ्रो इट अवे। और मुहज्जब मुल्कों में आप देखते हैं कि ट्रैश फेंकने के भी सलीके होते हैं, इधर खाने की चीजें जाएंगी, इधर प्लास्टिक जाएगा, इधर वो जाएगा। कोई अक्लमंद ऐसा है घर का, कोई बच्चा ट्रैश कैन में से बैग को निकाले और पूरे घर में उसको फिर लेकर फिरे, ड्राइंग रूम में जाकर थोड़ी देर रख दे, तो बस जवाब मिल गया आपको कि ट्रैश जो कि सब्जियों और फ्रूट्स का ही बचा हुआ हिस्सा है, उसको तो हम फौरन डंप कर दें। तो लिखिए, दूसरों की ज्यादतियों को, दूसरों की खराबियों को, दूसरों से गिलों को, दूसरों की गुजारियों को डंप कर दीजिए। कहाँ, दिल में, वल्ला ही दिल में न रखिएगा, आपका दिल एक ट्रैश कैन बन जाएगा। लिखिए एक जुमला, वो दिल ट्रैश कैन से भी गंदे और बदबूदार होते हैं, जहाँ हमेशा दूसरों के लिए बदगुमानी आती हैं। तो आज का ये खास टॉपिक है बदगुमानी, और फिर उसके ऊपर बुरी चीजें आना, और जब बुरी बातें मुंह से निकलती हैं दूसरों को तकलीफ होती है, बात तो सफर कर जाती है, फिर उस पर बदतमीजी और तोहमत और बद अखलाकी, अल्लाह का ये टेस्ट ही नहीं है। और आप देखिए, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से जब इसको जोड़ा और अपनी पसंद नापसंद से जोड़ा, तो फिर आप भी आज से कहिए मुझे भी नहीं पसंद, खाम खा बैठ कर टॉक शो वाले मंजर अपने घरों में ना रखिए, और कोशिश कीजिए कि किसी से भी बात ना करें। कभी कभी हम कहते दुख सुख है ना, अब मियाँ बीवी आपस में नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, और इस तरह से इंसान फिर इस तरह की बातें करता रहता है। इसमें बहुत डिटेल्स हैं, और अल्लाह करे कि हमें मोहलत मिले और हम इन चीज़ों से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें। फिर दूसरी चीज़ देखिएगा कि इस हिस्से में जो आपके मेरे सामने आई, वो कह के किसी नबी को मानना और किसी को ना मानना, ये जाहिलाना रवैया। बस आप देखिए कि यहूद या बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह नहीं मानते जैसे मानने का हक है। आगे नसारा आए तो वो हज़रत ईसा को भी मानने लगे, मूसा को भी मानने लगे, लेकिन आखिरी नबी को ना मानने लगे। मुसलमान ही वो कौम है जो मूसा को भी मानती, ईसा को भी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानती, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानती, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दिलो जान से मानती है। तो याद रखिए, ये फ़र्क करना भी जाहिलाना रवैया होता है। फिर इसी तरह से हमने सीखा कि मुनाफिक जाहिलाना सोच के हामिल होते हैं और दुश्मने रसूल होते हैं। और एक और रवैया हमने देखा इन आयात में कि खिलाफ सुन्नत मन पसंद काम और बिदात करना, ये जाहिलाना तरीके हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इनसे बचा के रखे। आगे चलते हैं आयत नंबर 153 पे। यसलुक अहलुल किताब, आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह को दिखा दे, बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद इसके कि इनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को अपना महबूब बना लिया, लेकिन हमने ये मौत फरमा दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और सरीख दलील अनायत फरमाई। आप देखेंगे इस कौम के जहां भी तस्करे हैं वहां बछड़े का जिक्र जरूर है। हर दौर का बछड़ा भी मुख्तलिफ होता है। तो फिर क्या सीखा अभी तक? आयात के इन उनवान की रोशनी में देख लें, गीबत बुराई नहीं करनी, जाहरी और पोशीदा तरीके से नेकी करना है, और तसव्वुरे वहदत अदियान का रद है, ये भी एक मरगूला है आज के दौर का, इसको अलग से भी देख सकते हैं। यानी सारे अदियान को जमा करो और एक जगह ब्लेंड करके एक मिक्सचर बना लो और सारी दुनिया वाले इसी को लेते जाएं, ये भी आज के दौर का बहुत बड़ा शोष है। और इसी तरह बेजा सवालात करना नापसंदीदा है और सरकशी का इंजाम बहुत बुरा होता है। सुनिएगा 154 से ऑनवर्ड इसी बात को। और इनका कॉल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और इन्हें हुक्म दिया, सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज न करना, और हमने इनसे सख्त कौलो इकरार लिए। अल्लाह की सुन्नत तो यही है, वो उम्मतों को ऐसे नहीं छोड़ता। लेकिन क्या किया जाए जाहिलियत का, कि वो अल्लाह ताला की किताबों में आई हुई सारी बातों को सुनने और पढ़ने का वक्त ना पाए, तो ये कौलो इकरार समझेगा कौन? नतीजा क्या हुआ? आयत 155, ये सजा थी बस अब इनके अहद शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफर करने के। कल उन्होंने किया कि आज हम तो नहीं कर रहे, सोचिएगा इस पे। और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूं कहते हैं कि हमारे दिलों पर गिलाफ है, हालांकि दरअसल इनके कुफर की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। इसलिए वजह क्या है कि कलील ही लोग ईमान लाते हैं। फला युमिनून इल्ला कलीला, थोड़ा सा इसको समझिएगा। आप देखिए कि दिलों पे मोहर कब लगती है, स्टैम्प्ड हार्ट किसके होते हैं, गुल्फ गिलाफ वाले, कि जब दिल पर ठप्पा लगे तो बुराई अच्छी लगती है, आसान लगते हैं वो काम जो बुरे हों, और नेकी बुरी लगने लगती है। यानी एक वक्त आता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे एक इंसान पहुंच जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुद को अक्लमंद समझते हैं। पिछली सारी आयतें जो इसमें पड़ी उसकी बिना पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो तुम कयामत के बारे में इतने गैर संजीद हो, जाहिलियत के अकीदे पेश कर रहे हो कि फलां बचाएगा और फलां कर लेगा। तो अल्लाह ताला ने इस चीज की दावत यहाँ दे दी कि है छिकनी नहीं करनी वरना दिलों पे मोहरें लगेंगी। अब देखिए कि जब खत को लिख के बंद कर दिया जाता है ना, तो उस पर स्टैंप लगा दी जाती है और सील भी लगा दी जाती है। बस लोग क्या समझते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 151 में देख चुके कि रसूल के मुनकर को यहाँ काफिर कहा गया। लोग क्या चाहते हैं कि रसूल हमें दीन दें और जाएं, बस दैट्स इट। नाउज़ुबिल्लाह बस एक पोस्टमैन वाला काम, उसने खत डाल दिया, अब उस खत में खुशी की बात है, गम की बात है, उसमें पेचक है या उसमें कोई बुरी खबर है, रसूल का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ आपको मुझे इस बात का भी यकीन दिलाते हैं कि रसूल सिर्फ अल्लाह का पैगाम, चले रब का पैगाम उसके बंदों तक सिर्फ पहुँचाने नहीं आते बल्कि वो समझाने भी आते हैं। और आखिरत के बारे में गलत फहमियाँ ही असल में इंसान को जाहिलियत की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिरत का दिन बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर होगा, एक बहुत बड़ी सेरेमनी होगी और भागते दौड़ते हंसते खाते पीते आखिर में हम अपने रिजल्ट्स लेकर आ जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि देखो, अगर आज दुनिया में तुम्हारे दिल पे मोहर लग चुकी है और तुम हिदायत की तरफ आना नहीं चाहते, बुराइयां भाग भाग कर करते हो और नेकियों से तुम दूर भागते हो, तो क्यामत के दिन तुम्हारा अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ऐसी ही कौम जब खुश फहमियों का शिकार हुई तो उसका क्या हाल हुआ, इसका तस्करा है आगे। वह कौली है मिन्ना कतल नल मसीह ईसब न मरियम। इनके कुफर के बायस और मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बुख्तान बांधने के बायस जब लोग अंबिया कराम के बारे में ऐसी बातें कहने लग जाएं, तो याद रखिए फिर दिल पे मोहर लग जाती हैं, फिर बात समझ ही नहीं आती। और यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, यह है जाहिलियत का जुमला। हालांकि ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया। देखिए, जिस अकीदे की बुनियाद ही स्लीप पे हो, क्रूसीफाइड, फिर उसकी बाकी तालीमात क्या होंगी? क्योंकि सूली पे चढ़ाना कोई खुशी की बात तो नहीं। आम बंदे को ना अच्छा लगे तो ये नबी के नाम के साथ, और कितने यकीन से अपने इस जुर्म का इकरार करते हैं भूलपने में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो मर्जी कहते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि हालांकि ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का शबी बना दिया गया था। यकीन जानो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं, इन्हें इसका कोई यकीन नहीं सिवाय चंद तहमीनी बातों पर अमल करने के। इतना यकीनी है उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही सोच जो कुरान ने दी। यहूद ने कुछ और दावे किए, नसारा ने कुछ और दावे किए, दोनों दूसरी तरफ चली गई बातें। इसलिए फरमाया, किया क्या, क्या हकीकत है ईसा की अलैहिस्सलाम? बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके, और क्यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। तो याद रखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। अक्सर सोचती हूँ मैं, पता नहीं क्यों दिल में आ जाता है कभी ख्याल, आसमान की तरफ नजर पड़े और शौर से देखो तो कहती हूँ ईसा अलैहिस्सलाम कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या होगा। बस आपको मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उनके लिए इंतजाम किए होंगे और दुनिया में वापस भी आएंगे। इल्म पाने वाले मुसलमान तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं, और जाहिलियत पाने वाले तो दावे कर चुके कि ईसा आके चले भी गए और अब तो उनकी कब्र भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमारी ये जहालत दूर कर दे, और अल्लाह ताला हमारे जरिए से ऐसे लोगों की भी इस्लाह फरमा दे। नाम तो इस्लाम का लेते हैं और खुद को मुसलमान कहते हैं और समझते हैं, लेकिन अकायद में इतना बड़ा जोफ आ जाए तो अल्लाह ताला फिर दिलों पर बाज़ दफ़ा मोहर भी लगा देता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने की बात की, और फिर इसके बाद उनकी कौम ने जो जाहिलियत के काम किए उसका तस्करा। फबी जुल्म मिनल्लसी नहादू, जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी इनके जुल्म के बायस, और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बायस, और लोगों का माल ना हक मार खाने के बायस, और इनमें से जो कुफार हैं हमने इनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। आपने एक चीज नोट की, अभी तक हम तीसरी दफा ब्राह रास्त सूद का तस्करा सुन रहे हैं। दूसरी बात यहां एक नोट कीजिएगा कि हम सोचते हैं कि ये इस्लाम में ही हराम है, हालांकि किनकी शरीयत इस वक्त हम समझ रहे हैं। सूरत मायदा इसलिए बड़ी अहम सूरत है कि इसमें बनी इसराइल यानी यहूद और नसारा की बहुत सारी शरीयत पेश की जा रही है जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। तो सूद सिर्फ मुसलमानों ही का मसला नहीं, उनका भी था, लेकिन जब कौमें अमल करना छोड़ देती हैं किसी हुक्म पर तो ऐसे लगता है कि वो चीज़ उसमें है ही नहीं थी। इब्ने माजा की रिवायत सुनिए 2279, आपने फरमाया जिसने भी सूद से माल बढ़ाया इसका अंजाम ये होता है कि इसका माल घट जाता है। अब ये माल चाहे घर की सूरत में है या कपड़ों और किसी और लोन की सूरत में है या बिजनेस लोन है, हमें आज सोचना ये बहुत बड़ा फितना है। امت مسلمہ کو درپیش فتنوں میں مالی معاملات میں سب سے بڑا فتنہ سود ہے، اور اس نے انسانیت کا سانس گھٹا ہوا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے اس وقت، پوری دنیا خود اپنے قوانین پہ پریشان ہے اور ایک اکنامک ٹیررزم کا شکار ہے۔ دنیا کی دولت صرف 200 گھرانوں میں، پوری دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت بڑے بناتے ہیں ان پہ ہاتھوں میں بڑی بڑی حکومتیں، سپر پاورز ان کے ہاتھوں میں گروی رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اس فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ سب کی نجات کرے اور اس سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، لاکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اپنے دور کے لوگ بھی اور آج کے دور بھی انہی کاموں کو کر کے بچیں گے، کہ یہود کے اہل ایمان کی صفات ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ماضی کے یہود کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آج کے یہود اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو پھر ان کو بھی انشاءاللہ یہ سب کچھ ملے گا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ لوگ بھی نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں پتہ، یہ میرا گمان ہے۔ تو لکھ لیجئے کہ ہر دور کے نبی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے، وہ مسلمان تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قانون بدل گیا، ان کی کتابوں کا بھی یہی تقاضا تھا اور ان کے انبیاء کا بھی ان سے یہی مطالبہ تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے تو پھر آپ نے ان کی شریعت کو ماننا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، ورنہ دیکھیں اچھے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، سوشل ورک وہ بھی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہی بچے ہوتے ہیں تو وہ بچے کہلاتے ہیں، ورنہ تو اس کو الیگل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مان کر، اس کے حقوق نہ دے کر، آپ انسانوں کے جتنے مرضی حقوق دینے کی نیت اور ارادے کرتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے نام لیتے ہیں، کیوں نہ لیں؟ جو کام کے ساتھی ہوتے ہیں، جو دعائیں لیتے ہیں، جو مشن کے راہی ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے تو اصل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس پلان میں رنگ بھرے کہ جو انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے؟ جی چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کلام کریں؟ تو جی، تو جواب یہ کہ نماز پڑھیے۔ نماز میں ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، قرآن میں اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، بلکہ بل ہوا کلام اللہ تو قرآن میں کہہ بھی دیا گیا، فرق صرف اتنا ہے۔ دیکھیے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا نا، ہم بھی کلیم اللہ بن سکتے ہیں، بلکہ ہیں کسی حد تک۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شوق سے انتظار کرتے تھے کب ملاقات ہوگی، وقت سے پہلے ہی چلے گئے۔ سورۃ الاعراف میں ڈیٹیلز آئیں گی۔ ہمیں نماز بوجھل لگتی ہے، قرآن بورنگ لگتا ہے، سلیپنگ پل لگتا ہے، سوئی گئی میں، تو آف کورس جب آپ بستر میں رضائی میں بیٹھ کر سنیں گے تو نیند تو آئے گی آپ کو، تو بوجھ نہیں لگے۔ آج کے بعد یہ نیت کیجئے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ رسولوں کے آنے کا مقصد اتمام حجت تھا، کہ لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے، پھر وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا نصیب ہے۔ اسی لیے فرمایا، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کر دیے، یہ بات تو ہم نے کر لی، اور بہت سے کہ نہیں، کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور تقریباً 25 کے قریب نام ہمیں ملتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تھے، کسی کو الگ شان دے دی جیسے موسیٰ سے کلام کیا۔ کیوں آتے ہیں رسول؟ اتمام حجت۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ کل کے دور میں رسول اتمام حجت ہوتے تھے، آج کے دور میں استاد اور مبلغین اتمام حجت ہیں، जिसके कानों पे बात पड़ गई, जिसको किसी उस्ताद ने अपनी शागिर्दी में ले लिया, अब उसके पास अमल ना करने की कोई हुज्जत नहीं रहेगी। देखिए, जाहिल को भी अल्लाह पूछेगा, लेकिन इल्म लेकर, और नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है उस्ताद का मिल जाना, इन नेमतों को पाकर भी भटक गए, इनको पाकर भी अमल ना पूरा हुआ, तो क़यामत के दिन जरूर पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। आज भी देहातों और गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग महरूम है, इल्म नहीं है, उस्ताद नहीं है, कई जगह स्कूल नहीं है, उनका हिसाब आसान होगा। मुझे तो लगता है कि सबसे मुश्किल हिसाब हमारा ही होगा, कि जो दिन रात इस इल्म के पास से अपने आप को फैजाब करते रहें, लेकिन इसके बावजूद फिर अमल ना बदलें, इस खौफ से सुनना ही छोड़ दें कि चलो सुन लिया तो अमल बड़ा करना पड़ेगा। आज हमारी उम्र में जाहिलियत क्यों है, कहते नहीं 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 सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा। चलिए आगे से आप नोट कीजिएगा, पिछलों की गवाही मैं दे देती हूँ, एक दफा अभी तक हमने 5 पारों में ये नहीं पढ़ा कि जो सुनेंगे और अमल नहीं करेंगे बस उन्हीं की पकड़ है, और जब नहीं सुनते बेचारे बड़े भोले भाले, और भोलपने में गुनाह भी कर देते, कपड़े भी कम कर लेते, नमाजें तो है ही नहीं जिंदगी में, अल्लाह उनको बड़े प्यार से ले जाएगा कि फरिश्तों ले जाओ, ये बड़ी भोली थी, इसको याद ही नहीं रहता था कि बाहर जाते वक्त मैंने क्या पहन कर जाना है, ये ऐसे ही कमरे के कपड़ों में निकल कर बाहर चली जाती थी। तो माजरत के साथ, अल्लाह ताला ऐसे नहीं है, तो हुज्जत तमाम आपके मेरे ऊपर हुई कि नहीं, ये मैं भी पूछूं खुद से और आप भी खुद से पूछ सकते हैं। तो क्या देखा हमने इन आयात में, पहली बात है कि यहूद पर इनके अमाल की वजह से हलाल को हराम कर दिया गया, पैगंबरों की तरह वही भेजी गई, अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे जाते थे, और अब पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मते मुस्लिमा पर है। अल्लाह ताला हमें इसका शौक भी और जौक भी लगा दे और तरीका भी सुझा दे। इसलिए अल्लाह ताला आगे अपनी गवाही की बात करते हैं, बड़ी अहम आयत है, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अनज़ला इलैक, जो कुछ आपकी तरफ उतारा है इसके बारे में खुद अल्लाह ताला गवाही देता है। जरा सा रुकिए, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है इस किताब की जो आप पढ़ रही हैं इस वक्त और मैं भी पढ़ रही हूँ। क्या, किस बात की गवाही देता है कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह ताला बतौरे गवाह काफी है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इस किताब को बहुत इज्जत के साथ इस दुनिया में भेजा। आज भी जो शख्स इस किताब को पकड़ेगा ना, अल्लाह उसको बाइज्जत कर देगा। इखलासे नियत से, सुन्नत तरीके से आप इस किताब के खिदमतगार बन जाएं, खादिमे कुरान, खादिमे कुरान, किताब को फैलाने वाले मुबल्लिग बन जाएं, एडमिन बन जाएं, आप माइक कोऑर्डिनेटर बन जाएं, आप गलत चीज़ों पे नज़र रखने वाले बन जाएं, अल्लाह आपको भी इज्जत दे देगा। ये अल्लाह की बात है। ये जैसे आप देखिए मैग्नेट है ना, उसको लोहे के पास रखें तो लोहा भी मैग्नेट होता है, इसी तरह ये किताब जिसकी ज़िंदगी में आती है उसकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। ये बात असीमु बिहब्लिल्लाह का हुक्म जब टूटता है ना, और ये रस्सी हाथ से छुटती है ना, तो फिर बंदा पेंडुलम बन जाता है, इधर से उधर लुढ़कता तो रहता है लेकिन किसी एक जगह पे नहीं आता। फिर कुछ और बातें यहूद की शरीयत की, जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह ताला हरगिज हरगिज ना बख्शेगा और न इन्हें कोई राह दिखाएगा सिवाय जहन्नम की राह, जिसमें वो हमेशा पड़े रहेंगे, और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से सबको बचा के रखे। अब देखिए जरा शऊर को बेदार करने वाली आयत, या अय्युहन्नास कद जाकुमुर रसूलु बिल हक्की मिर रब्बिकुम, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम इनकार करते हो तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह ताला दाना भी है और हिकमत वाला भी है। रसूल की आमद का तस्करा है। आप कहते हैं जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जश्ने आमद रसूल की बजाय मकसद आमद रसूल समझ लो, और वो क्या है कि तुम ईमान ले आओ, फायदा हो जाए। अल्लाह तो इतमामे हुज्जत कर दे, रसूल तो हक लाया था, लेकिन तुमने क्या किया। अब अगली चंद आयात आपको मुझे इसका एक हल्का सा नक्शा देंगी कि जब नबी हक ले आए लेकिन बाद वाले उस हक में मुबालगा कर ले तो उसका असल मुकाम बदल दें, गलूफ में पड़ जाएं। आइए जरा अगली आयतों को पढ़ के फिर समझते हैं। ए अहले किताब, या अहलल किताब, इला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ और अल्लाह ताला पर बजुस हक के कुछ ना कहो। मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और इसके कलमे कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से डाल दिया गया था, और इसके पास की रूह हैं। इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो, और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बास आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है, अल्लाह ताला इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला काफी है काम बनाने वाला। जी, यहां से देखिए कौमों के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह गलूब है। थोड़ी सी बात करेंगे। अल्लाह का हुक्म क्या पढ़ा आपने? मैंने वला तकूलु सलासा, तीन ना कहो, ट्रिनिटी कुछ नहीं है। लेकिन तसलीस के बारे में आज के कुछ लोगों का एक जाहिलाना अकीदा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि तीन खुदा हैं, यानी अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम। एक और दूसरा सेक्ट है नसारा में, क्रिश्चियंस में, वो कहते हैं नहीं, अल्लाह भी और ईसा अलैहिस्सलाम भी और रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अब आप देखिए कि इन तीन चीजों के मुकाबले में अल्लाह का हुक्म के ला तकुलु सलासा, तो कहाँ से आ गया था ये इनके अंदर? एक जुमले में समेट देती हूँ कि हर दौर के मुसलमान किसी भी पेगन कल्चर से मुतासिर हुए तो दीन बदला। जैसे आज हम पे भी बहुत सारे रंग हैं इस चीज के, हमारी शादियों और हमारी इबादत के तरीकों में पेगन कल्चर बहुत सारा है। मुशरिकाना कल्चर के साथ रहते रहते हमारे में भी जर्म्स आ गए। लेकिन नसारा कैसे बिगड़े? तो ये उस दौर के ग्रीक कल्चर से मुतासिर हुए थे, यूनानी कल्चर, उसमें स्टैचूज बनते थे। स्टैचूइज्म आज भी बहुत मारूफ है ग्रीक कल्चर में, वहां से ये बिगड़े थे। इसकी डिटेल हमने इस बिलुल जन्ना में काफी ज्यादा ली हुई है कि चले हम तो उनको देखकर बिगड़े ना, वो किसको देखकर बिगड़े, ये स्टाइल है। तो ये तो थी उनकी बात, उसको तो पीछे कीजिए। एक सवाल कीजिए खुद से, क्या दौरे हाजिर के मुसलमान भी गलूफ करते हैं? क्या आज असरे हाजिर के मुसलमानों का फितना गलूफ नहीं है? और वो क्या है? जहालत भरा अमल। कैसे? मसलन आप देखिए कि कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गलूफ करते हैं, कुछ सहाबाए कराम के हवाले से, कुछ आइमाए कराम के हवाले से, और कुछ सूफिया कराम के हवाले से। गलूफ होता क्या है? मैं एक मिसाल से बात कर दूं तो मुझे भी आसान लगेगा समझाना। आप देखिए कि खाने में नमक डलता है, डलता है। मिर्च डलती है, डलती है। सब्जी और गोश्त डलता है, डलता है। एक चम्मच नमक की जगह आप 6 चम्मच डाल दें, और मिर्चों में से आप कह लीजिए कि 10 चम्मचें डाल दें, और सब्जी जो है वो 1 किलो की जगह 1 पाव डाल दें, मुझे बताइए वो खाना कोई खाएगा? और 2 चम्मचे चीनी की भी डाल दें, कोई भी नहीं खाएगा। बिल्कुल जिस तरह पके हुए खाने के अंदर कमी बेशी करने से खाने का रंग बदल जाता है, इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए दीन और तरीक़े ज़िंदगी और शरीयत में जब हम रंग अमेजियाँ करते हैं, जब हम उसमें कुछ डालते हैं, कुछ निकालते हैं, तो गलूफ आता है, अफरात और तफरीत, एग्जेजुरेशन। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का मुकाम बढ़ाया तो कहाँ पहुँचा दिया, रसूल का बढ़ाया तो उसको खुदा बना दिया, सहाबा को किया तो ऊपर, यानी आगे पीछे कर दिया। एक पेंटर तस्वीर बनाए और कोई बच्चा जाकर उसमें रंग अमेजी कर दे तो उसको कैसा लगेगा? अल्लाह ने इतनी प्यारी बैलेंस शरीयत दी जिसमें हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल्लाह भी हैं, अल्लाह का हक भी वाजे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हकूक हमारे जिम्मे हैं, और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। इस पर एक पूरी बुक हमने पढ़ी थी तफहीमुस सुन्ना सीरीज की, कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक के बारे में बात की गई, हकूक रहमतुल आलमीन, पढ़िए जाके देखिए, 8 बड़े बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम है। लेकिन हम इसको जब बदल देते हैं तो फिर क्या होता है? दीन में जब हम अपनी मर्जियां करने लगते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि बिदात इबादत बन जाती है और इबादत बोझ लगने लगती है। बेहतरीन मामला दरमियानी मामला होता है। आपने फरमाया कि बीच के मामले अच्छे हैं, पिछली कौमें गलूफ की वजह से हलाक हो गई। आज अपने आप को देख लीजिए, मैं और आप, आज के दौर के गलूफ की मिसालें 25 दिसंबर सारी दुनिया में वो किस नाम से मनाया जाता है? हालांकि ईसा अलैहि सलाम तो गर्मियों में पैदा हुए, क्योंकि खजूरें पकने का मौसम था, सूरत मरियम में आप पढ़ लीजिएगा। तो बात यह है कि आज हम भी शरीयत में आगे पीछे हो गए। किसी गाड़ी के तार को इधर से निकालकर उधर और उधर के लगाए के पूछे तो कहें क्या फर्क पड़ता है तो इंजन में ही ना। तो अपनी मर्जियां नहीं करनी, और जाहिलियत का ये तोहफा है कि गलूफ जरूर होगा। قرآن سنت کے احاطے میں رہتے ہوئے دین پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے. صحیح بخاری کی روایت 7320، ابو سعید الخدری راوی ہیں، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گھو، یہ جانور ہے جیسے گلہری ہوتی ہے اور زمین کے اندر گھسنے والا کوئی جانور، اگر وہ کسی گھو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے. ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پھر اور کون؟ یعنی ہاں ایسا ہی ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ دیکھیے تو نصارہ کا حال کیا تھا، ان کو اللہ کے احکامات سے بے رخی ہوئی اور بے عملی کی سزا کیا ملی؟ پہلی بات دیکھیے کہ فرقے بنتے ہیں، فرقے بنتے ہی وہاں جب اصل ختم کر دیں گے. دیکھیے مین ریسیپی کو فالو کیجئے، ایک ہی ٹیسٹ رہے گا کھانے کا، تو کوئی ایک ہاتھ سے پکائے کوئی دوسرے سے پکائے تو پھر وہ تو اصل چھپ جائے گا. آپ مزے مزے کی چینی ڈالیے اور میٹھی چیزیں ڈالیے، اس کے بعد آپ کو پھیکا دودھ ہی نہیں اچھا لگے گا، بچہ پیے گا ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح سے وہ دین لوگوں کو پھر بوجھل لگتا ہے، کہتے بور ہو گئے، تھک گئے، اتنا نہیں بڑھ سکتے، بس ہم تو یہ پڑھیں گے اور تھوڑی دیر بعد دہی بڑے کھائیں گے اور چلے جائیں گے، یہی ٹھیک ہے. کیا آج امت مسلمہ کا یہ حال تو نہیں ہو گیا؟ جب فرقے بنتے ہیں تو پھر دوسرا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے شدید نفرت اور عناد پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں جا کر عبادت نہیں کرتے. آج جب تک مسجد کا سائن آپ کے پسندیدہ نام کا نہ ہو، آپ تو وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے. آپ تو کسی کی کتاب نہ اٹھائیں کیونکہ وہ آپ کے پسندیدہ نام کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. تو اللہ کے لیے اس سال کم از کم ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے یہ جہالت نکال دیں. اور جہالت معذرت کے ساتھ کہوں گی، کچھ جاہل دینداروں کی پھیلائی ہوئی بھی ہے. جب ممبر پہ آ کر لوگ لوریاں دینے لگ جاتے ہیں اور اس کا پلو اور اس کا پلو تھام لو، تو پھر کون کرے قرآن کے ساتھ اتنی محنت، کون پڑھے حدیث کو؟ اللہ تعالیٰ ہماری جہالت دور کر دے. اور آج آپ دیکھیے کہ نبیوں کے نام پہ ہی لڑنے مرنے والے لوگ بھی خود ان کی تعلیمات پہ غور نہیں کرتے. 172 آیت کو آج اس تناظر میں سنیے کہ حضرت عیسیٰ کیسے تھے، ان کا عمل کیا تھا، وہ خود کو کیا کہتے تھے، اور آج انہی کے فالوور، پیار محبت کرنے کے دعوے دار، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یہی ہے غلوف کا نقصان، کہ اصل کو پیچھے کر کے ہم نقل پر چلنے لگ جاتے ہیں، پھر اصلی چیزیں کوئی نہیں لیتا کیونکہ مہنگی ہوتی ہیں کوالٹی کی وجہ سے، اور نقلی چیزوں پر آ جاتے ہیں. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں. آر کا انگلش ترجمہ لکھ لیجئے تو آسان ہوگا، امبیرسمنٹ یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ان مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے اس دنیا میں. اب دیکھیں سورت نساء کے خاتمے کی آیتیں، ہم سورت نساء پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے احکامات ہیں، اور آگے آپ دیکھیں گے سورت مائدہ کا بھی مضمون بہت حد تک اس سے ملتا ہوا دکھے گا آپ کو. تو کیا ہوگا، کیسے یہ سب ملے گا؟ جب جہالت دور کریں گے. اور اس کے برعکس، اور جن لوگوں نے آر کیا اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے. کھول کھول کے ساری باتیں تھی، اس لیے پھر کہا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، دل پہ لیجئے، او ہیومینٹی، او مین کائنڈ، ہم تو مسلمان نہ پڑھ سکے اپنی کتاب صحیح طرح، ہم نے تو یہ آیتیں سنوانی تھی غیروں کو، کیونکہ میرے آپ کے گھر میں یہ قرآن، اور اللہ ساری انسانیت کو پکارتا ہے. اصل میں دعوت ہے اللہ کے نبی کو ماننے کی. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. یہ قرآن سند، یہ قرآن دلیل، اور یہ قرآن واضح، اور یہ کتاب نور ہے. اتنی خوبیاں ہیں اس کتاب میں. اب ہوگا کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ ہمیں اس کو مضبوطیوں سے تھام لینے والا بنا دے، انہیں تو وہ ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا. اللہ ہم پہ بھی اپنی رحمت اور اپنا فضل کر دے، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھائے گا. اللہ ہمیں بھی اپنا راستہ دکھا دے، بھٹک چکے جہالت کا شکار ہو کر زندگیاں گزار دی، اے مالک تو ہمیں اس کتاب سے فائدہ لینے والا بنائے۔ تو کیا دیکھا، قرآن سے دوری جاہلیت کی راہ پر لے جاتی ہے، امیجن کیجیے۔ اور آج بھی آپ کو اپنے ہی مسلمانوں میں ایسے لوگ دکھیں گے، بڑے بڑے جہالت کے کام کرنے والے، انسانیت کو اللہ سے دور کرنے والے کام کرنے والے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کیا ہے؟ برہان، نور مبین، صراط مستقیم دکھانے والا، اللہ کی رحمتوں کو لانے والا اور اللہ کا فضل انڈیلنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آپ سورت کی آخری آیت، پیچھے بھی ہم نے وراثت کے احکامات پہ بات کی، اب سورت کے آخر میں وہ چیزیں جو ایک دور رہ گئی تھیں ادھر، وہ ادھر آ گئیں۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اس انداز کو نوٹ کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہن دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا، 2/3۔ اور کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ۔ نوٹ کیجیے گا، انت دلو، اللہ تعالیٰ میں جاہل نہیں رکھنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے، انسانی معاملات کی آیت اور اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف رکھی، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اور کلالہ کو ہم کیا کہتے ہیں اپنے کلچر کی زبان سے دیکھیے تو، جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہ اولاد، نہ بچے، نہ ماں باپ، افتر نہ خطر، جڑ کٹا، ابتر بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو جن کا کوئی بھی نہ ہو، بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی، بعض دفعہ شادی نہیں ہوتی، بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک انسان اکیلا اپنے آپ کو پاتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے مال کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے میرے سامنے رکھا۔ تو یہ تھی سورت النساء، جس میں ہم نے آخر میں خاص طور پہ غلف کے موضوع میں اور عبادت میں عار نہ کرنے کے موضوع کو دیکھا۔ آج ہم خود کو اللہ کا بندہ کہنے میں عار تو نہیں سمجھتے، چند ہائی لائٹڈ اس سورت کے لے لیجئے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے، تاکہ پھر پورے شرح صدر کے ساتھ ہم اگلی سورت کو شروع کر سکے۔ 148 سے 150 ابتدائی آیتیں پارے کی، اس کا مضمون کیا تھا؟ دوسروں کی برائیوں کو نشر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا، یہ دو جہالت بھرے رویے ہیں، ان دونوں سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے۔ پھر آیت 153، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جاہلیت بھرا مطالبہ تھا، وہاں شرک تھا بچھڑے کی صورت میں، جو جہالت کی انتہا ہے۔ پھر اس طرح 154 میں تورات کے مشکل ہونے کا، یہود کا جاہلانہ بہانہ اور اصحاب سبت کے حیلے بہانے اور جاہلانہ طریقے، یعنی کتاب بڑی مشکل ہے، تم لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ لو ہماری کتاب لے جاؤ، یا ہم نے اس کا خلاصہ کر دیا اور یہ فتوے دے دیے، یہ کیو اے سیشن لکھ دیے، چلو عوام جاہل اور دین پہ آپ کی مناپلی، یہ کیا تھا اس قوم نے، کہ آج تو نہیں ہو رہا ایسا کچھ۔ پھر اسی طرح 155 سے 157، یہودیوں کا قتل انبیاء، مریم علیہ السلام پر بہتان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے دعوے، یہ سب جہالت والے اقدام تھے اور جملے تھے۔ اور 160، اللہ کے راستوں سے دوسروں کو روکنا جہالت ہے، خود سے سوال کرتے کہیں انجان پنے میں میں اس کا ذریعہ تو نہیں بن جاتی۔ پھر 161، سود، باطل طریقوں سے ناحق مال کھانا جہالت کی علامت ہے۔ اور 171، دین میں غلو، ایک جہالت ہے۔ اور 173، عبادت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت سے رک جانا اور تکبر کرنا، یہ جہالت کی دو نشانیاں ہیں۔ تو یہ جاہلیت والے اعمال ہیں سورت نساء کے حوالے سے۔ ذرا سا خود سے تو پوچھئے، آج کیا واقعی میں بھی اسی کا شکار تو نہیں؟ آپ دیکھیں کہ آج ہم بھی امبیرسڈ مسلم ہیں، وی آر سوری ٹو بی مسلم، ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلم دکھاتے ہوئے، خاص طور پہ اگر ہم ویسٹ میں رہتے ہوں، ہم وہ حلولیہ نہیں پہن سکتے جو دوسروں کو لگے کہ ہم پتہ نہیں مسلمان ہیں یا بہت ہی کیجول ہے، ہم نے بھی گھر کے کپڑے اور باہر کے اور رکھ لیے۔ آج اگر کسی محفل میں چھینک آ جائے، کتنے لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، ایکسکیوز می، سوری۔ آج جتنے شوق سے ہم یونیورسٹیز کے سٹیکرز گاڑیوں پہ لگاتے ہیں، کیا ہم اپنے بچے کے اس مدرسے کا سٹیکر لگا سکتے ہیں جہاں سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو بات یہ ہے कि जब कौमें अपोलोजेटिक हो जाएं, और हाल ये हो कि जिनके हाथों में जरकोन है वो तो फख्र करते दिखे और उनको पाने के लिए पांव एड़ियां उछाल कर ऊपर करते रहें, और जिनके पास डायमंड्स और हीरे हों वो कौम शर्मिंदा हो, तो फिर वो आज का मुसलमान है। अल्लाह ताला हमारे अंदर से वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम का टाइटल और एहसास ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए हम इन चीज़ों को लेंगे भी और देंगे भी। और ये जो नूरम मुबीना की बात हुई ना 174 में, तो याद रखिए कि दो नूर चाहिए होते हैं चीज़ को देखने के लिए, एक आँख का नूर और एक दिल का नूर। एक को बसारत कहते हैं, एक को बसीरत कहते हैं। अल्लाह ने आँख का नूर हमें आँखों की सूरत में दे दिया कि हम ब्लाइंड नहीं हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह दिल का नूर भी दे दे कि अंत जलील कुरान अलजीम रबी अकल्बी व नूर असदरी। अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। अल्लाह ने तो नूरम मुबीन बनाकर भेज दिया, अब आंखें और दिल हमें खोलना है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसान बनाए। चलते हैं आगे सूरत माईदा पे। इसका एक और नाम भी है अल अकूत। बिल्कुल पहली ही आयत में हम पढ़ेंगे औफ बिल अकूद में। हकीकत यह कि मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी होती है। हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे हुए लोग हैं। कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ मॉरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। कुछ चीज़ें फितरत में गुंदी हुई लेकर बच्चा आता है। इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे और दुआ के साथ शुरू कीजिए कि अल्लाह उम्मते मुस्लिमा को आज पाबंद ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे और हम इन सारे मामलात को लेकर चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल्उक़ूद। ए ईमान वालों, ज़रा सा खुद को अलर्ट कर ले। अल्लाह ताला ने आपका मेरा नाम ले लिया। सहाबाए कराम की सुन्नत समझते हुए थोड़े से अलर्ट होके बैठ जाइए। कहते थे कि बहुत दूर से तुम्हें पैगाम आया है, गौर से सुनो, क्योंकि इसके बाद या तो कोई हुक्म होगा और या किसी चीज़ से रोका गया होगा। कोई किसी का नाम ले ले तो फिर उसके कान तो खड़े हो ही जाते हैं। क्या करना है ईमान वालों ने? एहतो पैमान पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं, बजुज इनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। यकीनन अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस सूरत में आपको बार बार ये पुकार मिलेगी। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की शायर की बेहुरमती न करो, ना अदब वाले महीने की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबे को जा रहे हों, और न इन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब्बे ताला के फजल और इसकी रजाजोई की नियत से जा रहे हों। हाँ, जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजकारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज्यादती में मदद न करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। क्या पता चला? नंबर एक, मोमिन की जिंदगी एक पाबंद जिंदगी है। दूसरे, कुछ रिचुअल्स हमने देखे जो खाना काबा की तरफ कुर्बानी को ले जाने के थे। यहाँ शायर इल्ला लफ्ज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। शायर शईरा की जमा है, वो चीज़ जिसको देखकर कोई याद आ जाए। आपने कभी कहा फलां चीज़ मेरी नानी की निशानी है? बास लोग बच्चों को भी निशानी कहते हैं। कभी खुदा ना खास्ता बेटी का इंतकाल हो जाए तो उसके बच्चों को देखकर माँ रोती है, हाय खुद चली गई, निशानियाँ छोड़ गई। तो शईरा हर वो चीज़ है जिसको देखकर शऊर हासिल हो और जिसको देखकर अल्लाह ताला की तरफ ध्यान हो। शायर इल्ला क्या है क्या नहीं है ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। खाना काबा शायर इल्ला में से है, कुर्बानी का जानवर, इस्लाम के रिचुअल्स इसमें हैं। आप और मैं अपनी मर्जी से किसी चीज़ को शायर इल्ला नहीं बना सकते। बस अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार को आप शायर इल्ला नहीं कह सकते। आप किसी और बुजुर्ग की कब्र का नाम लेकर ये नहीं कह सकते कि इसकी भी तज़ीम है। आप और मैं आपस में जो बात भी कर सकते हैं वो हमारी अपनी बात होगी, लेकिन जो अल्लाह ने कह दिया उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था। तावनु लल बिर्रि व तक्वा वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान। इस पे गौर कीजिएगा। देखिए, जमा का लफ्ज है तावन से तावनु। टीम वर्क के बगैर ना नेकियां होती हैं ना बुराइयां फैलती हैं। इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारा गिरोह है कि नहीं, लेकिन नेकी की बात है, तुम्हारा उसमें कोई नाम मेंशन करता है कि नहीं करता, कोई बात नहीं, नेकियों पे तावन कर दो। आज के दौर में जाहिलियत की बात और जहालत की बात जो समझ में आती वो क्या है कि लोग सिर्फ उस चीज पे तावुन करते हैं जिस पे उनका नाम लिखा हो। तो याद रखिए कि नाम पहचान है, मजीद लोगों को बुलाने का जरिया है। इसके अलावा नामों की कोई हैसियत नहीं, ना कब्र में ना हशर में और ना जन्नत में जाकर नामों पे बात होगी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए हमें खैर की चाबियां और शर के ताले बना दे, और फिर बेहतरीन तरीके से इस दीन को सर्व करते ही जाएं। सोच के भी खुशी नहीं हो रही कि किस तरीके से दुनिया में दीन फैले और मुझे आपको कोई याद भी ना रखे, हमारा नाम भी नाम तहों में दब जाए या बुनियादों में पड़ी हुई ईंटों की तरह दब जाए जिसके ऊपर अब एक खूबसूरत इमारत खड़ी हो चुकी है। शीशे तो लगे हुए लोग दिखे और आपका मेरा नाम भी ना हो, लेकिन क़यामत के दिन जब आप अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएं तो वहाँ किसी चीज़ में ये मुमकिन ही ना हो कि आपका जिक्र ना हो। ये नेकियाँ कीजिए, छुपी हुई नेकियाँ, ताकि अल्लाह के यहाँ पेश कर सकें, उसको वसीला बना सकें जब कभी किसी मुश्किल में पड़े। दूसरी बात, सूरत मायदा में हराम और हलाल की बहुत सी चीज़ें, यहाँ जो एक अगली आयत आ रही है आपके मेरे सामने, इसमें एक लिस्ट है। पूरी शरीयत में सिर्फ चंद चीज़ें हराम है, सारी चीज़ें खाने की हलाल, लेकिन हराम चीज़ों की एक मुख्तसर सी लिस्ट। आयत नंबर 3 सूरत मायदा, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो और जो गला घुटने से मरा हो और जो किसी जर्ब से यानी चोट लग कर मर गया, जो ऊंची जगह से गिर कर मरा हो, जो किसी के सींग मारने से मरा हो और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन इसे तुम ज़िबाह कर लो यानी मरने से पहले उस जानवर को ज़िबाह कर लो तो हराम नहीं, और जो आस्तानों पर ज़िबाह किया गया हो और ये भी कि कुर्रे के तीरों के जरिए फाल गिरी हो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं। आज कुफार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए। सोचिए, खबरदार तुम इनसे न डरना और मुझसे डरते रहना, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। कितना प्यारा जुमला, इब्ने अब्बास तो कहते हैं कि यह आखिरी आयत थी, हालांकि पीछे सूरत बकरा में वत्तकु यौमन तुरजौ नफी ही पे ज्यादा का इतफाक है कि वो आखिरी है, लेकिन हकीकत यह है कि हज्जतुलविदा के मौके पे यह आयत नाजिल हुई तो 2-3 माह ही तो उसके बाद बचते हैं। लेकिन आपके मेरे लिए खुशी की बात क्या है कि वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ इसका मेलान ना हो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला और बहुत मेहरबान है। क्या पता चला, दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है, इसमें हर बात का जिक्र है, हकुकुल्लाह भी हैं, हकुकुल इबाद भी हैं, इंसानी मामलात में माली मामलात भी हैं और आयली कवानीन भी हैं। इसके बाद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए, वो स्टोर जिसमें सब कुछ मिल जाए वो ज्यादा इजी नहीं लगता शॉपिंग के एतबार से। इसके बरक्स आप देखिए कि मुआशरे में हमेशा लोगों ने शरीयत के रास्ते के मुकाबले पे जाहिलियत का रास्ता अख्तियार किया। शरीयत का फंदा उनको गले का बोझ लगता है, वो कहते हैं ये शरीयत के पट्टे उतारो, कुछ नहीं, हम तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का पट्टा पहनते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ऐसे जुमलों से भी महफूज रखे हमें। तो शरीयत के रास्ते के मुकाबले पे जाहिलियत का रास्ता है। इंजाम देख लीजिए, शरीयत को मानने वाले कामयाब हैं और जाहिलियत के रास्तों वाले कल नाकाम होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस बात की तौफीक दे कि हम मान जाएं। फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी रकीक है, जो तदब्बुर के लिए छोटी छोटी टिप हर पारे में एक आध आयत पे आपको दे ही देती हूँ, वो लफ्ज़ देखिए, अकमल तू और अतमम तू, दो लफ्ज़ गुजरे हैं आपके लिए आयत नंबर 3 में। अकमल तू उर्दू में हम यही कहते हैं पूरा करना, तमम तो फर्क क्या है? देखिए, अकमल मुकम्मल करना, इसी से लफ्ज़ कमाल भी है, बा कमाल का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना, जबकि अतमम तो का लफ्ज़ है ना अतममा, तमाम करना पूरा करना। कमाल है अकमल में। अल्लाह सुबहान तआला ने क्या फरमाया, अकमल तु लकुम दीनकुम, यानी दीन इस्लाम में क़यामत तक के मसाइल को पेश कर दिया और अतमम तो अलैकुम नेमती हुज्जत तमाम कर दी, तम्मत बिल खैर। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने तो मुकम्मल शरीयत दी, अब अल्लाह ताला हमारी नेकियों के कामों को भी तकमील पे पहुंचाए। अल्लाह हमसे मुकम्मल काम कराए, अधूरे मंसूबों को अल्लाह ताला पूरा करा दे। और ये वो पैगाम है जिसको लेने के बाद दिल चाहता है कि इंसान सजदा करे कि अल्लाह ने आपको मुझे इतने प्यारे दीन पे रखा। इसी आयत पे दूसरों ने रश किया कि अगर ये आयत हमारी होती तो हम उस दिन ईद मनाते। हज़रत उमर ने कहा कि हमारे लिए ये ईदी का दिन है, तो अल्लाह करे कि इस पूरी शरीयत को छोड़कर हम जाहिलियत के तौर तरीकों के पीछे न जाएं, और भटकेवों के पीछे जाने वाले खुद भी भटकते हैं। आगे एक सवाल, यस सलू न कमा जाओ हिल्लम, आपसे दरियाफ्त करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत सिखाते हो, जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है, बस जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखे, तो तुम इससे खा लो और इस पर अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया करो, यानी जिबा करते वक्त जो उसको जानवर को छोड़ते वक्त दुआ पढ़ लो जो कि जानवर को जिबा करते वक्त पढ़ी जाती है, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। शिकार अरबों की घट्टी में पड़ा हुआ था, इसीलिए ऊपर आपने देखा कि हराम की पाबंदियों में शिकार पे भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि आजमाइश हमेशा पसंद की चीज़ पे आती है और अल्लाह ताला बंदे को खालिस करता है उस चीज़ से निकाल कर। इसीलिए बागे कुछ और हलाल हराम चीज़ें, सवाल जहन में अक्सर आता है कि आम अहले किताब का खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्या उनकी औरतों से शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो चंद अहकाम इस नौयत के हैं, कुल पाकीज़ा चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गईं, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ज़बीहा इनके लिए हलाल, और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए, इनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं, जबकि तुम इनके मेहर अदा कर दो, और इस तरह के तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि एलानिया जिना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकरीन ईमान के अमाल जाया और अकारत हैं, और आखरत में वो हारने वालों में से हैं। अहम आयत है, पहली बात है कि अहले किताब का जबीहा उन्हीं शराइत पे जायज़ है जो मुसलमानों के लिए हैं, कि अल्लाह का नाम भी हो और उसके बाद उसका खून भी बहाया हो। दो शर्तें हैं हलाल और हराम गोश्त की। पहली बात तो देखिए कि जो जानवर अल्लाह ने हराम कर ही दिया, जैसे सुअर का नाम आता है, इसी तरह दरिंदे और ऐसे परिंदे जो चीर फाड़ करते हैं, वो तो हराम है। इसके अलावा आम जानवर जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, इनको काटने का तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर, और रगे गर्दन काट कर छोड़ दीजिए। जानवर तड़प तड़प के अपने जिस्म का वो खून बाहर निकाल देगा जिसमें गंदगी थी, उसके बाद फिर उसको ज़िबा कर लीजिए। ये दो शर्तें मुसलमान पूरी कर ले तो भी वो जायज़ है खाना, और इसी तरह अहले किताब का वो शख्स जो तौहीद का भी और सही अकीदे का हामिल हो, ये नहीं कि वो अब आज एथियस बन चुके हैं और कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ इस्लाम को और क्या है अल्लाह का नाम। बिल्कुल यही बात निकाह की है, क्या एक मुसलमान मर्द किताबी औरत से निकाह कर सकता है? तो नोट कर लीजिए, शरायत आप पढ़ चुके आयत में। नंबर एक, मुहसिना औरत हो, पीछे पढ़ चुके हैं हम मुहसिना के लफ्ज़ को, यानी कैद में हो, पाक दामन हो, यहाँ पाक दामन का मतलब है यानी करप्ट औरत ना हो, उसके दूसरे मर्दों से ताल्लुकात ना हो। दूसरी बात है, निकाह इधर भी होगा, लिविंग टुगेदर नहीं होगा, जस्ट लाइक हम साथ रह रहे हैं ये नहीं होगा। फिर इसका भी हक महर मुकर्रर होगा, और ये टाइम मैरिज नहीं होगी, ये ग्रीन कार्ड मैरिज नहीं होगी, पेपर मैरिज नहीं होगी, बल्कि घर बसाने का इरादा होगा। चलिए देखते हैं कि दौरे हाजिर के मुसलमानों के कुछ जाहिलाना रवैये इन आयतों में दिखे जो अभी तक पढ़ चुके। पहली बात है, गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। जरा सोचिएगा, जब आपकी दोस्त आपको किसी ऐसी पार्टी के लिए बुलाए जिसमें अल्लाह की हदें टूटने वाली हैं, और आप सुबह से जाकर उसकी प्लेटें सजा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं, सोच के मदद किया करें। फिर सितारों और तोतों से किस्मत का हाल मालूम करना, फॉर्चून टेलिंग और फ्यूचर टेलिंग, इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है। इसको आप, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सितारे गर्दिश में, और आप ये करिए और वो करिए, ये तो हमारे अखबारों का मुस्तकिल हिस्सा रहा, अब मुझे नहीं पता आता भी है कि नहीं। याद रखिए, एक मुसलमान मुल्क के अखबारों में ये चीज़ें नहीं आ सकती, इसको बैन करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए, हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो जाती है, खा लो कुछ नहीं, चुप चुप सब करते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते, ये जुमले जाहिलियत के जुमले हैं। हलाल और हराम बहुत बड़ा एक इशू है हमारे दीन का, इसको इंशाल्लाह हम आगे भी लेंगे और महसूस करेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ रखा है। फिर इसी तरह दीन में बिदात पैदा करना और मनमानियां करना, अपनी मर्जी के इजाफे और कमियां, और गैर मुस्लिम औरतों से सिर्फ शहवत यानी लस्ट पूरी करने के लिए ताल्लुक रखना, अल्लाह ताला आज के मुसलमानों में से किसी में भी अगर इसमें कोई एक भी चीज़ है तो उससे बचा ले। आगे नमाज और ख़ास तौर पे फिर वुजू और तयम्मुम के तरीके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। लिख लीजिए कि सायत में वुजू के अरकान हैं, यानी इनमें से कोई एक चीज़ रुक जाए या छूट जाए तो फिर वुजू नहीं पूरा होगा। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसाह करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुसल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई हाजत ज़रूरी से फारिग होकर आया हो, यानी कॉल ऑफ द नेचर मुराद है, टॉयलेट यूज़ किया, या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, इसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। किस बात पे शुक्र करें कि अल्लाह ने इतना पाक दीन दिया है। दिन में 5 बार वुजू करके क्या जहन से बोझ उतरता है, क्या इंसान पाक महसूस करता है। और आपकी दी हुई मिसाल कि किसी घर के सामने नहर हो और उसमें 5 बार गुसल करें तो क्या जिस्म पे मैल रहेगा। तो इसी तरह 5 वक्त के नमाजी पे जो अच्छे तरीके से वुजू करे, गुनाहों का मैल नहीं रहता। आप देखिए कि अब इन आयतों को अगर हम पढ़ें तो फिर वुजू का तरीका भी पूरा नहीं पता, हमें तयम्मुम का भी नहीं पता। तो यहाँ नोट कीजिए, हुज्जियत हदीस कुरान की डिक्शनरी हदीस है। बस ये जुमला रट लीजिए तो आपको जो आयत नहीं समझ आती, समझ लीजिए कि इसकी डिटेल्स हदीस में होगी। कुरान अगर मुख्तसर है तो हदीस उसकी डिटेल्ड फॉर्म है और वो उसकी तशरीह है। वस्कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम, बार बार नेमतों की तस्कीर है, क्योंकि शरीयत बड़ी प्यारी है, इल्म दिया जा रहा है जो हालत के बदले में। तो शुक्र तो इस पे आप भी कर रहे होंगे कि अल्लाह ने आपको मुझे इस इल्म से फायदा लेने वाला बनाया। तुम पर अल्लाह की जो नेमतें नाजिल हुई हैं इन्हें याद रखो, और इसकी सेहत को भी जिसका तुमसे वादा हुआ है, जबकि तुमने कहा हमने सुना और माना। अल्लाह मुझे और आपको भी इसकी तौफीक दे। और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला है। उसके सिवा और कोई नहीं जानता, कोई पीर, कोई फकीर, कोई जिंदा, कोई मुर्दा, आपके मेरे दिल की नहीं जानता। तो उन लोगों की जहालत पे क्या इंसान रोए कि जो कहते हैं आते ही पता लग गया कि तुम्हारी तो सास ने तुम पे तावीज़ डाले, सास को कहेगा तुम्हारी बहू ने डाले। तो अपना अकीदा दुरुस्त कीजिएगा, अल्लाह के सिवा कोई दिलों के भेद नहीं जानता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत यानी दुश्मनी तुम्हें खिलाफ अदल पर आमादा न कर दे, अदल किया करो जो परहेजगारी के ज्यादा करीब है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। क्या पैगाम है, हक का साथ दो चाहे उसकी चोट गैरों पे पड़े। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी ने उनको यहूद के पास भेजा ताकि जिजिया लें और उनके फलों का कुछ खराज होता था वो लेने के लिए। तो यहूद के कुछ लोगों ने उनको रिश्वत देना चाहा कि ये थोड़ा सा कम हिसाब लगा दें ताकि हमें कम पैसे देने पड़े। या ऐसे ही कि जैसे आप किसी अकाउंटेंट से कहें कि ज़रा हिसाब बना दें कि टैक्स कम देना पड़े। तो किस्सा मुख्तसर कि उन्होंने जो जुमले बोले थे असल में वो इस आयत की जान है। कहने लगे कि मैं जिस हस्ती की तरफ से आया हूँ वो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और जिनकी तरफ भेजा गया हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मबगूज़ है, लेकिन ना उनकी मोहब्बत और ना तुम्हारा बुग़्ज़ मुझे हक बात से रोक सकता है। अल्लाह करे कि इस दर्जे का अदल और इंसाफ आज हमारी अदलिया में भी आ जाए और आम लोगों के अंदर भी यही आ जाए कि हम अल्लाह के दीन की बुनियाद पे बात करें, ना कि हम रिश्ते नातों पे बात करें। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ताला का वादा है जो लोग ईमान लाएं और नेक आमाल करें, इनके लिए वसी मगफरत और बहुत बड़ा अजर और सवाब है। इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर किया और हमारे अहकाम को छुटलाया वो दोज़खी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है इसे याद करो। जब एक कौम ने तुम पर दस्तराजी करना चाही तो अल्लाह ताला ने इनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया, और अल्लाह ताला से डरते रहो, और मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया और इन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी अहम आयत है, अल्लाह करे कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई इसको पहुंचा सके। किसी भी मुसलमान हुकूमत के करने के काम क्या हैं और अल्लाह की मदद और उसकी मायत को पाने का जरिया क्या है, क्योंकि ये जुमला बड़ा प्यारा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज अल्लाह का साथ मिल जाए ना तो हमारे सारे मसले और गम दूर हो जाएं। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम, शर्त क्या है? नंबर एक, ला इन अकमतुम अस्सला, अगर तुम नमाज कायम रखोगे, यानी हकूमती सतह पे नमाजें कायम करवाई जाएंगी, और ज़कात देते रहोगे, और मेरे रसूलों को मानते रहोगे, और इनकी मदद करते रहोगे, और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो मैं यकीनन तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा। लाओ कफिरन्नान कुम सही आती कुम वलाओ दखिलन्न कुम जन्नात इन तजरी मिन तहती हलनहार। अल्लाह अकबर। तो यकीनन तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिसके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहद पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्त से भटक गया। अल्लाह के वादे क्या थे लेकिन कौमें क्या करती हैं। अगली आयत में इसका जिक्र, फिर इनकी अहद शिकनी की वजह से वादे तोड़ देती हैं, अल्लाह से भी किए हुए, बंदों से भी किए हुए। फिर अल्लाह उनके साथ क्या करता, हमने इन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और इनके दिल सख्त कर दिए। जुमला नोट कर लीजिए, वादे करके निभाना ना, कमिटमेंट्स करके उनकी पूरी जिम्मेदारी ना अदा करना दिल को सख्त कर देता है। फिर दिल सख्त होता है तो क्या होता है कि वो कलाम को अपनी जगह से बदल डालते हैं और जो कुछ नसीहत इन्हें की गई थी इसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे। इनकी एक न एक खयानत पर तुझे इत्तला मिलती रहेगी। हाँ थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू इन्हें माफ करता रह, इनकी हरकत से चश्म पोशी करते रहो। बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो क्या पता चला, किसी जमीन के खित्ते पे, किसी मुल्क पे, किसी टुकड़े पे अल्लाह ताला का दीन नाफिज हो जाए और इस तरीके से नमाज और ज़कात का निज़ाम हो और रसूलों के एजेंडे को फॉलो किया जाए तो उस पर अल्लाह की मदद आएगी और उस पर अल्लाह की रहमतें होंगी। मदीना की बस्ती क्यों मिली? मक्का में क्या मुश्किल था? नमाजें पढ़ने पे कोड़े पड़ते थे, छुप छुप के नमाजें पढ़ी जाती थी। मदीना में आने के बाद जहाँ ना सिर्फ ये कि नमाज रोज़ा एस्टेब्लिश हुआ, अल्लाह के नबी ने कानून भी नाफिज किया, शरीयत नाफिज हुई, तो ये हर मुसलमान मुल्क के नाम एक पैगाम है आज के दौर में अल्लाह की तरफ से कि अगर तुमने अपने मुल्कों में शरीयत को नाफिज ना किया और इसी तरह से इबादत का निज़ाम कायम ना किया तो वही होगा जो आज हो रहा है। ये जाहिलियत है। अल्लाह के नाम पर एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल तो कर लेना लेकिन वहां अल्लाह का कानून नाफिज ना हो, क्या अल्लाह को इस पे गुस्सा नहीं आएगा? जितना ज्यादा इस पे गौर करेंगे आपको आज के दौर के फितनों में से फितना नजर आ जाएगा। कहते तो हम खुद को मुसलमान हैं लेकिन कहाँ इस्लाम दिखता है? नाम तो इस्लामी मुल्क है लेकिन वहाँ क्या निज़ाम है ये हम सब जानते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे कॉल और फेल के इस तजाद को ख़त्म कर दे। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने इनसे भी अहदो पैमान लिया, उन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया। जो इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने भी इनके आपस में बुग़्ज़ और अदावत डाल दी जो ता क़यामत रहेगी, और जो कुछ ये करते थे अनकरीब अल्लाह ताला इन्हें सब बता देगा। नोट कीजिएगा, जब किताबों में से नसीहत का हिस्सा भुला दिया जाए और फ़िरकावारियत को प्रमोट किया जाए तो दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत आ जाती है, बुग़्ज़ आता है, फिर इंसान छोटे छोटे गिरोहों में बंटता है। इसीलिए फरमाया, अहले किताब, अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके जो तुम्हारे सामने किताबुल्लाह की बकसरत ऐसी बातें जाहिर कर रहे हैं जिन्हें तुम छुपा रहे थे और बहुत सी बातों से दरगुजर करते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। बार बार अल्लाह के नबी की आमद का जिक्र आपको इस बारे में मिल रहा है। और कौन सी चीजें जिसके जरिए से अल्लाह ताला इन्हें जो रज़ाए रब के दर पे हों सलामती की राह बतलाता है और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास की तरफ राह बरी करता है। युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। क्या खूबसूरत चीज़ है। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में डाल दे और जहालत से निकाल कर इल्म की तरफ ले आ। तो देखिएगा कि जाहिलियत को दूर करने के लिए अहले किताब को अल्लाह ताला की हिदायत क्या है। पहली बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और दूसरी बात है कि किताब पर ईमान लाएं। होगा क्या, जाहिलियत के अंधेरों से निकल कर नूर की तरफ आएंगे। اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے اور اس تعلیم کو نہ مانے جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنمی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ اور میں نہیں بول سکتے۔ ہاں، ایک حصہ بن سکتے ہیں اس دعوت کا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور خود اس کی عملی مثالیں بنیں۔ کسی تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں ہوگا، وہ جنگلوں میں رہیں، صحراؤں میں رہیں، ان کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں، اور مجھے آپ کو کسی کو جہنمی اور کافر اور منافق کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے بندے وہ جانے، اس نے قانون دے دیے، اب وہ اپنے بندوں کو اس پہ جیسے چلائے۔ تو بعض دفعہ ہم بہت سارے نفرت والے جملے بول دیتے ہیں، ہمیں تو اپنا نہیں پتا، اللہ معاف کرے کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر صرف اس بات پہ گھبراتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، تو کبھی یہ جرت نہ کیجیے گا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے، تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ اب ذرا خوش فہمیوں کی لسٹ دیکھیے گا۔ جب قومیں غلوف کا شکار ہوتی ہیں اور علم کی بجائے جہالت کا راستہ اختیار کرتی ہیں، تو پھر اسی قسم کی خود فریبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ خود کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، کون روک سکتا ہے آپ کو یا مجھے؟ آپ اپنا نام بادشاہ رکھ لیں، شہزادی رکھ لیں، ملکہ رکھ لیں، بات یہ ہے کہ حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر آپ دیکھیے، ایک اور دفعہ دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس درد کو محسوس کرتے ہیں؟ یقین کیجئے کہ مدینہ کے وہ مٹھی بھر لوگ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لے آتے ہیں، تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا، کیونکہ اتنی ڈسپلن قوم، اتنی ذہین قوم، 100 سال کی پلاننگ کرنے والی قوم، اگر وہ اسلام کو قبول کر چکے ہوتے تو آج پوری دنیا پہ اسلام ہوتا۔ ہم مسلمان تو اپنے دین کو پروموٹ نہیں کر پا رہے، ہم تو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے، وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو یاد رکھیے، بعض دفعہ بڑوں کی چند چھوٹی چھوٹی باتیں، غلطیاں نسلوں تک کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ آج کے اس دور کے ماں باپ کو بھی فکر کی ضرورت ہے، اپنی غلطیوں کو مت دہرائیے تاکہ کل آپ کے بچے اسی کو دلیل بنا کر خود بھی وہی کام کرنے لگ جائیں۔ پچھلی قوم کے قصوں میں پھر کچھ قصے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں۔ انداز دیکھیے نبی کا کتنی محبت والا ہے، اور رسول اپنی قوموں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ محبت کے ساتھ بات کیجیے، بہترین طریقے سے بات کر کے اس ساری چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ اور یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ کیا؟ تمہیں ورلڈ لیڈر بنایا، تمہیں دنیا میں اپنا پیغام دینے کے لیے چنا۔ لیکن قومیں جب کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں تو ان کو اچھی سے اچھی نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی۔ یا قومی، اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس لیے کتابیں دیکھیے، ہدایت نامہ ہوتی ہیں، کیسے یہ کہ جیسے ایک بچہ کسی گڑھے میں گر رہا ہے اور پیچھے سے اس کو اس کا مخلص اور اس کا رہنما پکار رہا ہے کہ دیکھو اس گڑھے میں نہ گرنا۔ اپنے وقت میں رسولوں نے یہی کام کیا، اور آج تک کتاب بھی یہی کام کرتی ہے۔ لیکن قوموں کو جب جہالت کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، تو پھر ان کے کیا جواب ہیں، ذرا اس کی دلیلیں سنیے گا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوماً جبارین، انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے، یعنی پھر ہم پھول لے کر جائیں گے، فتح کا تاج لے کر جائیں گے. کام آپ کیجئے، کامیابی ہمارے نام لگاتے جائیے، یہ سٹائل ہے ان کا. دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے یعنی جو متقی تھے، وہ کون لوگ تھے؟ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو لوگوں نے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، یعنی کوشش تو کرو، شروع تو کرو، ارادہ تو کرو، پہلی ہمتیں توڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اور جو کھلاڑی گھر سے ہارنے کی نیت سے جائے وہ کبھی نہیں جیتا. ہم بھی بعض اتنے بالو جٹک ہو جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ بہت مشکل، اب نہیں، اٹس ٹو لیٹ، پھر صحیح، اگلے سال، اب نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مورائل بلند کر رہے ہیں، اور ان کے بعد پھر دو لوگ. نوٹ کیجئے گا، اللہ کا ڈر یہاں اللہ کی نعمت اور اس کا فضل بن گیا، کیونکہ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، تقوی آ جائے، خوف آ جائے، تو بندہ دین کے نام پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لے کر لبیک کہتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا خود کرنا ہے، تھوڑا بھی اللہ نے کرنا تو زیادہ بھی اللہ کروا لے گا. تو ہمیشہ اپنے حوصلے بلند رکھے، اور یہاں لیڈرشپ کوالٹیز بھی نظر آ رہی ہیں، ہمت بندھا رہے ہیں، اٹھو کرو، جیسے بچہ چلتا نہیں ماں کہتی اٹھو نا، اٹھو میرا بچہ، کھڑے تو ہو، اچھا چلو، ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک دن بچہ بھاگنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ بھی جہالت ہے کہ نیکی کا کوئی کام آ جائے تو وہ کہتے ہیں جان ہی نکل جائے، پیسہ لگانا پڑے تو اندر سے روح کھنچ جائے. اور دنیا کا معاملہ، ایک شادی اسی کو جہاد پہ نہ کر، چاہے اس پہ ساری عمر کی کمائی لگ گئی تو اب قرض بھی لینے لگ جائیں، اور جو جد و جہد اس میں کرتے ہیں 6-6 مہینے کی تیاریوں اور سال کی پلاننگوں سے، وہ سب چیزیں کس کام پہ ہیں. مانگیے کوششیں اللہ سے اللہ کے دین کی، خدمت کی. آج کے بعد ہماری زندگی کا قبلہ اور ہماری زندگی کا مقصد ایسے لوگوں تک پہنچنا بن جائے کہ جن تک ابھی علم نہیں پہنچا اور وہ جہالت کی موت مر رہے ہیں. دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. نبی کا کتنا پیارا انداز ہے، لیکن قوم کا ذرا بھونڈا سا جواب تو نوٹ کیجئے احتساب کے آئینے میں، کہ انہوں نے تو زبان سے یہ کہا کہ آج کا مسلمان کہیں اپنے حال سے یہ تو نہیں بیان کر رہا. قالوا یا موسیٰ، پہلے تو نوٹ کیجئے نبی کا نام لیتے ہیں، لکھئے جہالت کی علامت ہے نبی کا نام لینا. باپ کا نام نہ کوئی لے، بھائی کا لے لے چلے، شوہر کا نام لینا غیر تہذیب بنائے، اور آپ نبی کا نام لیتے ہیں. اور یہ واحد قوم ہے جس نے بار بار یا موسیٰ یا موسیٰ کا. یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہا ہوگا کیونکہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور یا میں تو خطاب ہے، یا نبی اللہ کہا ہوگا. لیکن نام لینا تو بڑی جرت کی بات ہے. آج بھی بعض لوگ جہالت اور علم کی کمی کی وجہ سے ایک طرف یا اللہ اور دوسرے مقابل نبی کے نام کے ساتھ بھی یہی لکھتے ہیں، تو یہ علم کی کمی ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ایسا کبھی نہ کیا. تو قوم کا جواب کیا ہے؟ یا موسیٰ انا لن ندخلہا بدم مادا مفیہا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں کام بہت ہے، ابھی فیشیل بھی کرانا ہے، ابھی ہم نے پلانرز بنانے ہیں، ابھی صوفے بھی بدلنے ہیں، ابھی ہم نے ورلڈ ٹور پہ بھی جانا ہے. کیا آج کا مسلمان اس جہالت کا شکار تو نہیں ہو چکا؟ دین کے بعد اللہ کرے گا انشاءاللہ، اور لفظ انشاءاللہ کو مذاق بنا دیا، یعنی نہ کرنے کا بہانہ انشاءاللہ. آج اس امت کا حال بھی کیسے لگتا ہے، بلو پرنٹ ہے اس قوم کا جن کے تذکرے ہم مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں. کیسے قومیں پٹتی ہیں، کیسے اس طرح کے حالات بنتے ہیں، یہ آیتیں پڑھ کر تو دل پہ بوجھ ہی بڑھتا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے. نبی کی بے بسی دیکھیے، اتنے اخلاص سے آپ دین کی طرف بلائیں اور آگے سے آپ کے اوپر یہ باتیں پڑھیں اور آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، تو ایسے وقت میں پھر نبی اللہ کو بلا لیتے تھے. تو چند جاہلانہ جملے جو ہم نے اس قوم کے سنے، جہاد سے انکار یہ کہہ کر کیا کہ آپ اور آپ کا رب خود لڑ لے، پیچھے اور اس سے جائیں تو ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، तो कौम मूसा की जाहिलियत के जुमले ये थे, आज उम्मत मुस्लिमा के जुमले क्या हैं ये आप खुद नोट कीजिए जब आप लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम इल्म की तरफ पलट कर आएँ, और इल्म भी वो जो इल्म नाफे हो। अल्लाह ताला इसके लिए रास्ते आसान कर दे। अब उनकी स्टोरी पूरी होती है बहुत ही डिसाइसिव अंदाज में कि छोड़ दो इनको, अब इनके हाल पे। याद रखिए, जब लीडर आपसे बेबस हो जाए कि छोड़ दो अब इनको, छोड़ दो इनके हाल पे, तो समझ लीजिए ये आपके मोहर लगे हुए देना। उस्ताद कह देना अब इसको छोड़ दो, ये नहीं पढ़ेगा, इसने नहीं पास होना, इसको के ठेला लगवा देना, तो समझ लीजिए वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकेगा ज़िंदगी में। नबी का दिल तोड़ने वाले खुशियाँ पाएं, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला कहते हैं बस छोड़ दो, मुझे भी अपने मूसा की ये बात सुननी और जो मूसा ने कहा ये पसंद ना आई कि इस कौम ने इतना सताया। काला फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, इरशाद हुआ आप जमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के बारे में गमगीन ना होना। ये है असल बात। अब देखिए वो कौम जिसकी तरफ मोहसिन आए, और कितने आए, 4,000 के करीब अंबिया कराम सिर्फ इसी कौम के पास है, लेकिन या तकजीब या कत्ल, कत्ल इस कौम की घुट्टी में पड़ा हुआ था। इसलिए भागे। दुनिया में पहला कत्ल जो हुआ हाबील और काबील जो आदम के दो बेटे थे, उनका वाक्य सुनते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी तबीयत के एतबार से कातिल नहीं है, लेकिन हसद का जज्बा इतना बुरा है कि भाई को भाई की छुरी के नीचे ले आता है। आइए सुनते हैं। वत्लु अलैहि नबअ आदम बिल हक, आयत 27। आदम अलैहि सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी ने सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना यानी कुर्बानी पेश की, इनमें से एक की नजर कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई, तो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। इसको भी हाईलाइट कर ले। कुर्बानियां जितनी मर्जी करें, सदके दें, सब कुछ करें, लेकिन अल्लाह किसका कबूल करता है? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन की कबूल करता है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे इन सारी चीजों से। गो तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। क्या पता चला कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ भाई पे ज्यादती करने से रोक लेता है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुना अपने सर पर रख ले और दोस्तियों में शामिल हो जाए, जालिमों का यही बदला है। बस इसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और इसे इसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन में खोद रहा था, ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे। वो कहने लगा हाय अफसोस कि मैं ऐसा करने से भी क्या गुजरा हो गया हूँ कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ। जरा से इस वाक्य पे गौर कीजिएगा। हसद इतना बुरा अमल है कि इंसान को आलिम से उतार कर जाहिल बना देता है। बस दफा लोग इल्म की बुनियाद पे भी हसद करने लगते हैं, बस दफा दुनियावी दौलत की वजह से हसद होता है। इस आयत में देखिए कि उसने भाई के सब्र और हिल्म को तो अपने लिए रोल मॉडल नहीं बनाया कि हाय मैं अपने भाई जैसा भी ना हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा, और एक कव्वे को देखकर खुद को उससे रिलेट कर रहा है कि हाय मैं तो इस कव्वे से भी क्या गुजरा हूं। तो क्या पता चला कि शैतान इंसान को जहालत की राह दिखाता है। ये पहला कत्ल जो काबिल के हाथों हाबील का हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम का आधा अजाब काबिल को होगा। हर कत्ल जो दुनिया में आज हो रहा है उसका गुनाह घूमते घूमते, जिसको कहे कि सदका जारिया जो बुरे रंग में हो, वो पीछे काबिल पे पड़ता है। तो इसलिए कोई बुराई शुरू करते हुए, गलत रस्म गलत ट्रेडिशन शुरू करते हुए, ज़रूर इसको सोचिएगा कि कहीं ये मेरी कब्र में पिछली फाइलें ही ना भर दे। आप देखिए ना कि आप कभी फ़ोन खोलते हैं, आपका फ़ोन स्ट्रक हुआ था, पता क्या चला किसी ने आपको बहुत पोस्ट भेज दी। कभी कभी इंसान कोई ऐसा काम कर जाता है कि उसके दुनिया से जाने के बाद भी उसका सदकाए जारिया जो गुनाहों की सूरत में होता है वो पहुंचता रहता है। अल्लाह ताला आपको मुझे जिंदगी में ही अपने आप को इस तरीके से इल्म के लिए खालिस करने वाला बना दे कि हमारे बात को बुरे सदका जारिया ना जाए। सोच के लिखिए, सोच के बोलिए, एक जुमला दूसरों को हिदायत से हटा देगा, एक जुमला, एक मजाक की बात दूसरों को जरूरत दे देगी। तो ये वाक्य बीच में क्यों आया बनी इसराइल की हिस्ट्री सुनते हुए? क्योंकि कत्ल इस कौम के लिए कह लीजिए कि गाजर मूली काटना था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। सोचिए कितना बड़ा जुर्म है, क्योंकि एक शख्स को कत्ल करना असल में उसके मुतल्लिकात को भी तो कत्ल करना है ना। और इसके बरक्स डॉक्टर हजरत के लिए एक बहुत खुशखबरी, और जो शख्स किसी एक की जान बचाए इसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। और इनके पास हमारे बहुत से रसूल जाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके बाद भी इनमें से अक्सर लोग जमीन में जुल्मों से आती और जबरदस्ती करने वाले ही रहे। बीच में मैंने डॉक्टर्स का नाम इसलिए लिया कि आप कहीं इस सोच में रिलैक्स होके ना सुने कि इसमें तो हमारे अमल की कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किसी को कत्ल नहीं करते। तो आप देखिए कि किसी की जान बचाना कितना बड़ा काम है और किसी की जान लेना कितना बुरा काम है। मसलन आप देखिए कि एक शख्स समंदर में डूब रहा है, आपको स्विमिंग आती भी हो तो कोई आपको उधर जाने नहीं देगा, आपकी माँ बहन साथ है तो पीछे से पकड़ेगी एक खास हद के बाद, अब आप ना आगे जाइए, आपको ना कुछ हो। मुश्किल काम है ना, क्या आप किसी डूबते को बचाएं, अपने डूबने का डर है। तो क्या मैं और आप इस काम को, लोगों को जहालत के समंदर में डूबने से बचाने वाला काम बनाकर नहीं कर सकते? अबॉर्शन के बारे में क्या ख्याल है, वो भी कत्ल है कि नहीं? तो लोगों को बचाइए, उनको जहन्नुम के ईंधन बनने से बचाइए। इसके बाद आगे डकैती की सजा है, जो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद करते फिरे, इनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं या इन्हें जिला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी, और आखरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब है अगर ये सजाएं नाफिज हो जाएं, तुम्हारे मुल्कों से चोरियां खत्म हो जाएं। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम इन पर काबू पा लो, तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहम वाला है। अल्लाह ताला को बंदे को बख्शना है, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि लोग गुनाह करें और अल्लाह ताला उनको माफ करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, मुसलमानों अल्लाह ताला से डरते रहो और इसका कुर्ब तलाश करो और इसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। वसीले का लफ्ज आ गया। वसीला क्या है? किसी चीज, यानी ऐसी चीज जो किसी मकसद के हसूल या इसके कुर्ब का जरिया हो। लेकिन ना वसला यासिलू मिलाने को कहते हैं ना, तो क्या पता चला कि वसीला मांगा जा सकता है। किस चीज का? नंबर एक अल्लाह ताला के नामों का, मतलब अल्लाह को कह सकते हैं तुझे तेरे रहीम होने का वसीला, तेरे करीम होने का वसीला, तेरे अल गफूर होने का वसीला। दूसरी चीज, हम अपने नेक अमाल को वसीला बना सकते हैं। अल्लाह के नबी बहुत दफा ये बात अपने असहाब को सुनाते थे कि तीन लोग गार में फंसे, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तो पना लेने के लिए गार में गए, ऊपर से एक पत्थर गिरा और दरवाजा बंद हो गया। पूरी कोशिश की लेकिन जो पत्थर था वो हट नहीं रहा, तो कहा कि अब इस वक्त और तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, चलो इखलास के साथ की हुई अपनी कोई नेकी लाते हैं और उसको वसीला बनाकर अल्लाह के सामने पेश करते हैं। तो मारूफ वाक्य, आप इसको कहीं से भी सुन लीजिए, तो एक के कहने पे थोड़ा सा रास्ता बना दूसरे के, और फिर तीसरे के रास्ता खुल गया। तो अपनी नेकियां छुपाइए, कुछ नेकियां इस मकसद से भी कीजिए कि कल कहीं फंस गए, अल्लाह ना करे कब्र में पुल सरात पे, तो वो नेकियां हमारे बचाव का जरिया बने। इसी तरह से आप नेक इंसान जो आपके पास मौजूद हैं, जिंदा हैं, आप उनसे दुआएं करवा सकते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इसी तरह का कुछ अमल करते थे कि अल्लाह के नबी का नाम लेते थे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि अल्लाह ताला का मोमिनों को क्या हुक्म है और दौरे हाजिर के मुसलमानों की जाहिलाना रविश क्या है। अल्लाह का हुक्म है तकवा हासिल करो, इत्तकू इत्तकुल्ला। हम क्या कर रहे हैं? तकवा के बगैर जी रहे हैं। अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं उसके रास्ते में कुर्ब इलाही के लिए वसीला तलाश करो, और जन्नत का एक मुकाम भी है वसीला। हम इसके बरक्स क्या करते हैं, गलत वसीले अख्तियार करते हैं, और खास तौर पे कब्रों में गए हुए लोगों के वसीले। आप देखिए ढांचे बन जाएं, वो आपकी मदद करेंगे, या जिंदा लोग कर सकते हैं, और वो भी एक खास हद तक। तो इस पे भी हमें समझना, इस पे एक पूरा लेक्चर है, मुझे याद है कि इस मौजू को बहुत डिटेल से हमने समझा था, ताकि ये रविश भी बदली जा सके, और इसकी वजह से आज बहुत सारे लोग जहालत का शिकार हो जाते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाहिदु फी सबीली ही, अल्लाह की राह में कोशिश करो, और हम कह रहे हैं जाहिदु फी दुनिया, सिर्फ दुनिया। तो फर्क है हम सब का आज इस किताब के अहकाम से, जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल गया। वसीले पे एक हदीस सुन लीजिए, सही बुखारी की रिवायत 1010। जब कभी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कहत पड़ता, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु के वसीले से दुआ करते और फरमाते कि अल्लाह, पहले हम तेरे पास अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लाया करते थे, तो तू पानी बरसाता था, अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाते हैं, तो तू हम पर पानी बरसा। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि चुनाचे बारिश खूब ही बरसी। अब इस पे जरा सा गौर फरमाइएगा, जिस वक्त हजरत उमर ये जुमले बोलते, उस वक्त हजरत अब्बास जिंदा थे, इस तरह बोलते, क्या उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लम का रोजा मुबारक मौजूद नहीं था? क्या हजरत उमर ये ना कह सकते थे कि नबी के वसीले से बारिश बरसा दे जो मस्जिद नबी के पहलू में दफन है? नहीं, तो क्या पता चला कि जो दुनिया से चले गए, आप उनको अपनी दुआओं में याद रखिए और अच्छा गुमान रखिए, और अल्लाह ताला में इतना वक्त दे कि हम इन मौजूआत को तफसील से सुने, क्योंकि अकीदे का मामला है। नेकियां हाथ में धरी की धरी रह जाती हैं जब अकायद में जोफ होता है। इसीलिए अब अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बेबसी बताते हैं, क्यामत के दिन क्या होगा, जिन्होंने जहालत की जिंदगी ही बसर की और इनकार पे मर गए। इन अल्लज़ीन कफरू लव अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीया, यकीन मानो के काफिरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी जमीन में है, बल्कि इसकी मिसल और भी हो, और वो इस सब को क्यामत के दिन के अजाब के बदले फिदिये में देना चाहें, तो भी नामुमकिन है कि इनका फिदिया कबूल कर लिया जाए, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। टाइम बाउंड चेक है, तौबा कैश करा लेंगे, अल्लाह ईमान देगा, और जब मौत के गरगरे शुरू हो जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये चाहेंगे कि वो दोजख में से निकल जाएं, लेकिन ये हरगिज इसमें से नहीं निकल सकेंगे, इनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से बचाए सबको। चोरी की सजा क्या है, उसका क्या हुक्म है? आयत 38, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया, अजाब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह तआला कुव्वत और हिकमत वाला है। हाँ, जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो अल्लाह तआला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है, यकीनन अल्लाह तआला माफ फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला है। क्या पता चला कि इस्लाम ने कुछ सजाएं रखी हैं, उसमें से एक सजा इधर है, और कुछ लोग अधूरे इल्म की वजह से इसको बदनाम करते हैं। आज इस्लाम पर जो एक इल्ज़ाम वेस्ट की तरफ से लगता है, वो भी यही है कि इंसानी सजाएं बहुत सख्त हैं, इस्लामिक सजाएं इंसानियत सोज हैं, और ह्यूमन राइट्स के नाम पर कह लीजिए कि वो ह्यूमन वर्शिप शुरू कर देते हैं। इस आयत को समझ लीजिए, पहली बात है कि चोरी करने वाला मर्द पहले कहा, क्योंकि कमाना मर्द की शान थी, जब वो इस शान की बजाय चोरियां करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। दूसरी बात पता चल रही कि औरतें भी चोरियां करती हैं, इसलिए यहां अलग से उसका जिक्र कर दिया गया। अब हाथ काटना है, कितना काटना है, कब काटना है, इधर तो कुछ नहीं, तो हदीस, कुरान की डिक्शनरी हदीस, उसमें बताया गया कब करना, कैसे करना। दूसरी बात यह कि जब हम आज के हालात पे क्यास करते हुए इस आयत को सुनते हैं, और हम कहते हैं जी कि अगर हमारे मुल्कों में हद नाफिज हो गई तो फिर तो सारे हाथ कटे होंगे, सवाल पैदा होता है कि आप अगर सऊदीया में जाएं, जहां अभी तक एक खास हद तक इस्लामिक कवानीन नाफिज हैं, हज और उमरे के दौरान क्या आपको कटे हुए हाथ के लोग दिखते हैं? नहीं दिखते, क्योंकि एक का कटेगा 1,000 लोग उसे इबरत लेंगे। चोरी नहीं है, आप वहां के होटल्स में सोना रखें चांदी रखें, कोई हाथ नहीं लगाता, खाना नहीं बचा हुआ कोई खाएगा, क्योंकि उनको पता है कि हम ये कमिटमेंट करके आए हैं अपने होटल वालों से कि हम ऐसा कुछ करें तो फिर हम पे मुकदमा चलेगा। तो बात यह है कि ये डराने वाली सजाएं होती हैं, इस डर से चोरी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये भी समझिए कि ये हदें तब लगती हैं जब सबके घर अनाज पहुंच चुका हो। अगर मुल्कों में गुर्बत और जहालत आम हो जाए और बेचारे रोटी रोटी को भी चखें, तो फिर तो चोरियां नहीं करें तो और क्या करें। कुछ तो आदि चोर होते हैं ना। लेकिन बात यह है कि आप पहले इस्लाम का वो रूप दिखाइए कि जैसे कि लोग माल लेकर फिरें और कोई लेने वाला ना हो, फिर कवानीन लगेंगे। अल्लाह के नबी ने ऐसी सजाएं एकदम नहीं लगवा दी। पहले दिलों की तस्खीर हुई, पहले दिल बदले, फिर उसके बाद सजाएं लगी। और आज भी देख लीजिए कि इन चीज़ों को अगर हम समझें तो वो मुल्क बेबस हैं जिनके पास बेहतरीन किस्म की CIDs भी हैं और गैजेट्स भी हैं, वो चोरों को पकड़ने में नाकाम हो चुके हैं। और साथ ही तौबा की बात करके चोर को भी तसल्ली दिला दी कि ये भी जुर्म करके तुम अल्लाह की तरफ वापस पलट सकते हो। आगे इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है, क्यों चोरियां करते हो, लोगों का माल क्यों लेते हो, तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांग लेते? क्योंकि अलम तअलमन अल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुझे मालूम नहीं? ये अंदाज होता है किसी को कॉन्शियस करने का। जैसे आप भी हो सकता है कभी कभी तर्जमा सुनते सुनते थक जाते हो और बीच में कुछ और करने लग जाते हो, तो एकदम कोई आपसे कहे क्या तुझे मालूम नहीं, तो कान खड़े होते हैं ना। तो ये खूबसूरत अंदाज है, लाइवली स्टाइल है कुरान पाक का ये। अब आप पूछेंगे क्या मालूम नहीं, तो सुन लीजिए, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ए रसूल, आप इन लोगों के पीछे ना कुड़िए जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, ख्वाह वो इन मुनाफिकों में से हों जो जुबानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकतन इनके दिल ईमान वाले नहीं। इससे पता चलता है कि साहिबे इल्म कुड़ता है, और रसूल के कुड़ने का तो कुरान में आगे जिक्र पढ़ेंगे कि फल अल्लाह का बाख नफ्स कला आसारे हम, तो आप और मैं क्या गलत कामों को देखकर कुड़ते हैं, लोगों को कुफर की तरफ बढ़ते हुए और मुशरिकाना रसूमात अदा करते हुए हम खुश हो रहे होते हैं उस वक्त, या फिर कुड़ रहे होते हैं? और कुड़ रहे हैं तो कुड़ने के लिए तो कोई 3 घंटे नहीं लगाएगा ना, क्या वो बैठ कर कुड़ते हैं? लोग तो इंजॉयमेंट के नाम पर ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये दर्द दे दे कि हम बुरे काम और गलत काम करते देख कर खुश होने की बजाय रोने ही लग जाए। और यहूद में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं और इन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलेमात के असली मौके को छोड़कर इन्हें बदल दिया करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, यानी हमारी ही सोच पे हैं तो ठीक है, और अगर ये हुक्म ना दिए जाएं तो अलग थलग रहना, और जिसका खराब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप इसके लिए खुदाई हिदायत में से किसी चीज के मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं, इनके लिए दुनिया में भी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है और आखरत में भी इनके लिए बड़ी सख्त सजा है। वही बातें जो सूरत बकरा में थी उसी को यहाँ जरा सख्त लफ्जों में पेश किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को काम देकर वापस नहीं लेता। कोई बड़ी बात ही होती है तो इंसान से कोई चीज वापस ली जाती है। कुछ और उनकी बद अखलाकियां जिसका वो शिकार थे, ये कान लगाकर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर के हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह इनके आपस का फैसला करो, ख्वाह इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुंह फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज कोई जरर ना पहुंचा सकते, और अगर तुम फैसला करो तो इनमें अदलो इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीनन अदल करने वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो क्या पता चला कि कुछ लोग बात बड़े गौर से सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसको आगे पहुंचाना होता है। तो क्या पता चला कि नमल आमालु बिन्नियात। दूसरी बात आपने देखा है कि अकालुन सुख, देखिएगा कुछ और जाहिलाना रवैये इन आयात की रोशनी में। पहली बात निफाक, हर पारे में किसी न किसी तरह निफाक का जिक्र है। अल्लाह ताला इस सफर में हमारे दिलों के अंदर भी अगर कहीं कोई छुपा कोई ऐसा कीड़ा है जो मुनाफ़क़त को पैदा कर दे तो उसको निकाल दे। क्या है निफाक? मर्जी के दीन पर अमल करने वाले, यानी उनको अपनी मर्जी का दीन चाहिए, टेलर मेड दीन, फिट टू ऑल, अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टांसिस। इसी तरह दीनी महफिलें इनके लिए फितना बन जाती हैं, वहां जाकर भी इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों का खुशी खुजू खत्म हो और फितना फैलाने वाली बातों पे सवाल छोड़ेंगे, एंड पे महफिल एक झगड़े पे खत्म होती है, इल्ला माशाल्लाह। इसी तरह जुबान और जिंदगी में झूठ आ जाता है निफाक की वजह से, ये भी जहालत है। खुद से पूछिए, मैं झूठ तो नहीं बोलती? और हराम का खाना जिंदगी में आ जाता है रिश्वत के तौर पे, जब हराम जिंदगी में आता है तो याद रखिए इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर, किस तरह से वो बंदा जो इबादत भी कर रहा है और पेट में हराम है, शैतान उसे कहता है छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं करने दो, इसकी कौन सी कबूल होनी है। اسی طرح شریعت اور قرآن کی بجائے من پسند جاہلانہ طرز زندگی. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کو ہم غور سے سنیں اور پڑھیں اور اس پہ غور کریں؟ چونکہ پارے کا موضوع جاہلیت ہے, آیت بھی جہالت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, تو کیوں نہ دیکھیں کہ جاہلیت کتنی طرح کی ہوتی ہے. تو دو طرح کی جاہلیتیں ہیں. ایک ہوتی ہے اسلام سے پہلا کا دور, یعنی اسلام سے پہلے کے دور کو ڈکشنری میں جہالت کا دور کہتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ لغوی معنی ہے. ڈکشنری میں اگر جا کر کوئی لفظ جہالت لکھے تو ما قبل الاسلام, اسلام سے پہلے کا دور اس میں آنے لگے گا. دوسری بات دیکھیے, اس کو تو ہم کہہ لیں گے تاریخی جاہلیت, لیکن ایک ہے نظریاتی جاہلیت. تھاٹ پیٹرن کو چینج کر دو, جاہلانہ سوچ اور طرز زندگی ہو جائے فرق. یعنی ماں بہن کا فرق مٹ گیا, شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق مٹ گیا, تو دور حاضر کا فتنہ غیر اسلامی جہالت والا طرز زندگی. آج کے مسلمان کو کوئی دیکھے اور بعد میں جا کے قرآن کو پڑھے تو کیا کہے گا؟ مجھے وہ قرآن دو جس پہ تم مسلمان عمل کر رہے ہو, کیونکہ تم میں اور قرآن میں فرق ہے. تو لکھیے, آج کا مسلمان کچھ اور ہے اور آج کا قرآن تو وہی ہے جو اللہ نے بھیجا. اسی طرح نام اور عبادتوں کی حد تک تو بندہ مسلمان بنے, لیکن طرز زندگی غیر مسلموں والا ہو جائے. نماز کے وقت تو کمپس لے کر ڈھونڈے کہ قبلہ کدھر اور کہاں اور کس طرف, اور اس کے برعکس شادیوں کے قبلے کدھر ہیں سب جانتے ہیں, معاش کے قبلے کدھر ہیں سب جانتے ہیں. تو صحیح بخاری کی روایت سنیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو. کیا پتہ چلا, جہالت سے بچنا ہے اور ہر اس طرح کی چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو آپ کو مجھے جاہل بنا دے. پھر فرمایا, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں, دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں. یعنی آپ کے ساتھ یہ کیوں ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے یعنی انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے, کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. یہ نوٹ کیجئے گا, اللہ کی کتاب کی حفاظت اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. لیکن کیا کیا, انہوں نے کتاب ہی بدل ڈالی اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو, میری آیتوں کو تھوڑے سے مول سے نہ بیچو, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وہی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. نوٹ کیجئے گا, پہلا مقام یہ ہے, دو آیتیں آگے بھی آ رہی ہیں. یہ ہے اصل میں جہالت کی سب سے انتہائی صورت. نام تو وہ مسلم ملک کا بنے لیکن وہاں اللہ کا قانون نافذ نہ ہو. کل یہود نے تورات کو نافذ نہ کیا تو یہ اللہ کا غضب ٹوٹا. اگلی آیتوں میں دیکھیے گا انجیل کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کے آگے پھر قرآن کا, تاکہ ہماری خوش فہمیاں بھی دور ہو جائیں کہ ہم صرف بند کتاب کی برکتیں لے کر ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. اور ہم نے یہود کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. اگر کسی کو شوق ہونا کہ میں ذرا پڑھوں تورات اور انجیل یا بائبل تو یہ سورت مائدہ پڑھ لیجئے. یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں انہی کی کتاب کی کوٹیشنز ہیں. تو آج تو بہت کچھ اضافے ہو گئے نا اور کمیاں ہو گئیں. قرآن نے پیور تورات اور انجیل ان آیتوں کی صورت میں محفوظ کر دی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت پچھلی کتابوں کی شریعت پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے, اور اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی, دوسرا اس میں ہدایت اور نصیحت تھی پارسا یعنی نیک لوگوں کے لیے. اللہ ہمیں اس سے نصیحت ہی لینے والا بنا دے, اور انجیل والوں کو بھی چاہیے. یہ ہے وہ دوسرا مقام جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کتابیں نافذ ہونے کے لیے آتی ہیں, صرف پڑھنے کے لیے نہیں آتی. नॉट थिंग्स टू रीड ओनली, उस पे अमल करने के लिए आती हैं। क्या कहा? और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया है इसी के मुताबिक हुक्म करें, और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा से ही हुक्म न करें तो वो बदकार और फासिक है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाए। तो देखिएगा कि अल्लाह ताला की किताबों के मुताबिक फैसले ना करने वाले तीन लोग, तीन नाम है, एक जगह लफ्ज़ काफिर आया उनके लिए, एक जगह जालिम और एक जगह फासिक। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है। ये है कुरान की वो खूबी जो इसको पिछली किताबों से मुमताज करती है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में ले लेती है, इस कुरान ने भी पिछली किताबों के मजामीन को अपने परों में ले लिया। आज तक इसका जेर और जबर ना बदल सका तभी तो महफूज है, वरना पता नहीं इसका क्या हाल हम मुसलमान आज कर चुके होते। इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक हुक्म कीजिए। इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे न जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर मंजूर इलाही होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है इसमें तुम्हें आसमाए। करो क्या? नोट कीजिएगा ये जुमला, फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो। तुम सब का रुजू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर वो चीज बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहते थे। अब यहां मुसलमानों को कुरान को शरीयत को नाफिज करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये मशवरा नहीं है, ये चॉइस नहीं है, ये इट्स ओके नहीं है, हैव टू। अगर आप इस्लाम के नाम पे किसी जगह हुक्मरान हैं और आपने इस्लाम के नाम पे कोई मुल्क अल्लाह से लिया है तो फिर आपको वहां इस आयत पे अमल करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं अब तो हूं नहीं इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कीजिए, वरना पूरे मुल्क की जवाबदेही हजरत उमर को रातों को रुलाती थी। कहते थे फरात के किनारे पे अगर एक कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर कल तुझसे उसका हिसाब होगा। तो आज करने का काम क्या है कि अल्लाह की शरीयत को नाफिज कीजिए, लेकिन उससे पहले लोगों का तस्किया हो, उनको इल्म मिले, उनकी जहालत दूर हो, अल्लाह के नबी के सहाबा की तरह दीन के लिए कट मरने को तैयार हो। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद फिर नाफिज करना क्या मुश्किल है, क्योंकि दिलों पे नाफिज करना ही असल नाफिज करना है। किसी एक हुक्म पे सहाबा ने कोई रिजेंटमेंट नहीं दिखाई, इफ्स एंड बट्स पे नहीं पड़े, क्योंकि पहले उनका तस्किया हो चुका था। फरमाया वाइनिहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह, आप इनके मामलात में अल्लाह ताला की नाजिल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म किया करें। इनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना कीजिए और इनसे होशियार रहिए, कहीं ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर ना करें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा ये है कि इन्हें इनके बास गुनाहों की सजा दे ही डाले, और अक्सर लोग नाफरमान ही होते हैं। अफ हुक्मल जाहिलियत यबगून वमन अहसन मिनल्लाह हुक्मन लिकौमी यूकिनून। आयत 50। क्या ये लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? ये है आयत तदब्बुर इस बारे की, जाहिलियत की बातें हो रही हैं। जहालत का फैसला चाहते हैं, ये दोबारा बेटियों को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं, ये दोबारा तबरुजुल जाहिलियत करके इनकी औरतें अपनी आराइश करके दिखाना चाहती हैं? क्या ये दोबारा सूद के निजाम में गिरना चाहते हैं? क्या दोबारा ये दूसरों की गर्दनें पकड़ के छोटी-छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना चाहते हैं? अगर आपने सीरत की बुक अर-रहीकुम मख्तूम पढ़ी हो तो उसका पहला ही टॉपिक अरब के हालात इस्लाम के आने से पहले, उसको पढ़ लीजिए, आपको ये आयत समझ आ जाएगी। क्या थे, अल्लाह ने क्या कर दिया? बद्दू और जाहिलों को अल्लाह ताला ने पीछे करके सहाबे कराम जैसी हस्तियों को चुना और इस्लाम उनकी जिंदगियों में आ गया। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा अपने हाल पे जितना गौर करे और इस आयत को उसके साथ जोड़िए तो देख लीजिए कि आज हमारे अंदर जाहिलियत की बातें तो नहीं आ गई, वही जाहिलियत का सा रवैया आज हमारे अंदर तो नहीं आ गया। तो जाहिलियत क्या है? इस्लाम मा कबल का दौर, यानी इस्लाम से पहला दौर हिस्ट्री के एतबार से। और आपके मेरे लिए आज के दौर में क्या जहालत है? शौरी इस्लाम लाने से पहले का दौर। आप और मैं इस्लाम को अब समझ के कुरान को पकड़ लिया, जरा पिछली जिंदगी पे तो गौर कीजिए। जब पहली दफा दौरे कुरान सुना था और उसके बाद तलब जागी थी और फिर आपने इस कुरान को लफ्जी तर्जमे से सीखने का इरादा किया, जरा उससे पीछे की बातें तो लाइए। यकीन करें, औरतें रोती हैं, स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हैं, हाय मैं ये भी करती थी, मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा। तो तौबा कीजिए, क्योंकि आज हमारी जहालत ख़त्म होती है कुरान पढ़ के। पहले दौर के लोगों की जहालत ख़त्म होती थी इस्लाम कबूल करके। तो जुमला लिख लीजिए, कल के दौर में इस्लाम कबूल करने से खैर आई, आज के दौर में कुरान को कबूल करना पड़ेगा। लिखिए, क्या मैं कुरान कबूल कर चुकी हूँ? और कुरान और इस्लाम के सिवा फिर बाकी सब कुछ कीलो काल है। जाहिलियत का लफ्ज़ कुरान पाक में चार जगह इस्तेमाल हुआ है। आइए ज़रा चारों को रिलेट करके देखते हैं। यहाँ है हुक्मुल जाहिलिया, जाहिलियत के कानून। इसी तरह जन्नुल जाहिलिया, हमीयतुल जाहिलिया और तबर्रुजुल जाहिलिया आया। जिस जिस बारे में आता जाएगा बोलती जाऊंगी, आप नोट करते जाइए। होता क्या है, सबसे पहले सोच गैर इस्लामी होती है, परसेप्शंस बदलते हैं। माजरत के साथ, जैसे आज हमारी जवान होती हुई नस्लों की सोच गैर इस्लामी होती जा रही है। उनको पर्दा रुकावट लगता है और उनको बाकी चीज़ें भी बोझ लगती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो नाखूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जब सोच गैर इस्लामी होती है ना, तो फिर अगली जहालत शुरू होती है, जिसको हमीयतुल जाहिलिया कहते हैं। यानी फिर बंदा जहालत वाले कामों की हिमायत करने लगता है, और इसकी बहुत बड़ी वजह गैर मुस्लिमों से दोस्ती और ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि अलमरु अला दीनी खलील ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आज देखिए, लोग जो डिफेंड करते हैं गैर इस्लामी चीज़ों को, क्या कोई इस्लाम की चीज़ों को डिफेंड करे? जब ये हिमायत दिलों में आती है ना, तो अगला मरहला होता है हुक्मुल जाहिलिया, जो यहाँ है। फिर कवानीन जहालत के बनते हैं। आज भी जहालत के कवानीन है मुसलमान मुल्कों में, अल्लाह की पनाह, अल्लाह का गज़ब ना टूटे तो और क्या हो। आज भी अल्लाह के घर में जाकर लोग जहालत के काम कर रहे होते हैं, अपनी स्नैपशॉट्स लेने वाले, अपनी सेल्फियाँ बना बना के लोगों को दिखाने वाले, क्या वहाँ से रूहानियत लेकर आएंगे? तो फिर हुक्माना जाहिलियत होती है। और जब कानून में जहालत आ जाए, जब होमोसेक्सुअलिटी लॉफुल हो जाए, मर्द मर्द की शादी जायज़ करार दी, औरत औरत का ताल्लुक जायज़ कर दिया, सूद मस्ट है, फलां चीज़ लाजिम है, तो उसके बाद फिर आखिरी नतीजा होता है तबर्रुजुल जाहिलिया, फिर दिखावा और नुमाइश, फिर औरत शोपीस बनती है, और फिर इस तरह जो होता है वो हम देखते ही जाएंगे। और तबर्रुजुल जाहिलिया तिलूला, ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जाकर तो हम समझेंगे, सूरत अल अहज़ाब में भी आप देखेंगे इसको। तो क्या पता चला कि चारों के बीच में एक रब्त है, चारों मरतबा मलामत और मजम्मत का अंदाज है इसमें। सवाल पैदा होता है कि जाहिलियत वजूद में कहाँ से आती है, यानी स्टार्ट कहाँ से होती है? पहली बात है शैतान का बहकावा, क्योंकि वो दुश्मन है तो उसने आपके साथ दुश्मनी तो करनी है, जैसे आदम और हव्वा को वसवसे देकर बहका लिया। फिर नफ्स शैतान के बहकावे में आ जाता है, यानी फिर आपका नफ्स आपसे वही काम करता है जो थोड़ी देर पहले शैतान कर रहा था। उसने भी आदम और हव्वा को फल चखाया, वसवसों के जरिए खूबसूरत सब्ज बाग दिखाए, यही चीजें कल आपका नफ्स दिखाता है, कितनी अच्छी लग रही हो, मैं तो नहीं डांपती, बुरी लगूंगी, मासी लग रही है, उम्र से बड़ी लग रही, ये अंदर से आवाजें आती है नफ्स के शैतान से। उससे फिर तीसरी चीज आती है ख्वाहिश परस्ती। आप एक औरत और एक बच्ची के तनाजर से इसको लेंगे ना, तो आपको ये सब स्टेप जुबानी याद हो जाएंगे। शैतान बहकाता है माशरे में, नफ्स बहकाता है घर में, अब माँ बाप कहते हैं अपने आप को छुपाओ, कहती है हाय नहीं, नफ्स कहता है ये क्या अम्मी अबू मजबूर करते हैं। उससे ख्वाहिश पैदा होती है अच्छी लगने की, वो फलां दोस्त कितनी अच्छी लगती है, उसके खुले बाल, वो कैसी लहराती थी, ये था वो था और वो फलां हीरोइन। इसका अगला स्टेप होता है शरीयत से दूरी हो जाती है, फिर शरीयत बोझ लगती है, सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा, जाकर बैठेंगे तो शर्मसारी होगी, और फिर आखिरी चीज बन जाती है जाहिलाना तर्ज जिंदगी बन जाता है, अफा हुक्मल जाहिलियत यबून। फिर हकीकत में जिंदगी में इतनी जहालत आती है कि असली दीन किसी को समझ ही नहीं आता, फिर वही हालात होते हैं जो आज उम्मत मुस्लिमा के हो रहे हैं। बहुत हद तक बहुत थोड़े लोग बचे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाला बनाए। किन लोगों से दोस्ती जाहिलियत की तरफ ले जाती है, ये भी एक कुरान का मिजाज समझ लीजिए, दोस्तियों से ही खराबी है। आज भी आप सीधे साधे एक गाँव में रहते हैं, एक ऐसी जगह महफूज माहौल है जहाँ आपके इर्द गिर्द सब अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपके दिल दिमाग में ये चीजें ही नहीं आएंगी। हमारी बच्चियों का बिगाड़ क्यों हुआ हम सब जानते हैं, बच्चियां माँ बाप को छोड़कर घरों से क्यों जा रही हैं हम जानते हैं, तो वजह पहली तो अहले किताब ही हैं उनकी मुवासलत, फिर मुनाफिकों के साथ रहने से ये जहालत पैदा होती है। اسی طرح دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنانے والوں میں یہ جہالت آتی ہے، فن کے نام پہ، چاؤ کے نام پہ، شغل میلے کے نام پہ، اور اسی طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنے سے جہالت آتی ہے۔ چلیے بیماری دیکھیے، اب علاج بھی دیکھیے کہ جاہلیت کو دور کرنے والے لوگ کون سے ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنائیں۔ ان کی خصوصیات آپ میں اپنے لیے ایک لسٹ تیار کریں۔ اگر اپنی زندگی سے جہالت کو نکالنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو خود اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اہل ایمان کے لیے نرم ہوتے ہیں، یعنی ایمان والوں سے سارا بغض نہیں ان کو ہوتا بلکہ رحما بینہم۔ تیسری بات ہے کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں، کون سے؟ زبانوں کے سخت نہیں، اصولوں کے سخت۔ اور اگلی بات اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے، محنت کرنے والے۔ اور پھر ان سارے کاموں میں اللہ کا بننے اور اللہ کی طرف بلانے اور اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کے رستے میں کوئی ملامت کرے تو لا تخافون لهم ولا تلائم، یہ آگے ہم سورت مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب بیچ میں یہ بات کر کے دوبارہ وہی حکم جہاں سے یہ جہالت کا بیج دلوں میں ڈلتا ہے مسلمانوں کے اور ان کی نسلوں کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یعنی کون سی دوستی کہ جس سے ان کا رنگ تم پہ آنے لگے، تم ان کے طرز زندگی کو اپنانے لگو، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی اس پکار یا ایھا الذین آمنوا پہ کوئی کان نہیں دھرے، وہ پھر بھاگ بھاگ کے انہی کی طرف جاتے ہیں، انہی کے ملکوں میں، انہی کے کلچر میں، انہی کے فن میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، تو پھر یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، یعنی اس لیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو چلیں پھر ہم اپنے راستے بنا لیں اس طرف کے جدھر بہت کچھ ہے، اور جب اللہ ایمان والوں کو کوئی خیر دے دے تو پھر شرمندہ ہوں گے، یہ مراد ہے۔ اور ایماندار کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے، یعنی اس طرح کے طور طریقوں کے ساتھ اگر انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے تو سب ضائع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، ہائی لائٹ کیجیے گا ان آیتوں کو، اگر جہالت کا ٹاپک نہ ہوتا اس بارے کا تو میں اس آیت کو تھیم آیت بنوا دیتی، لیکن اس آیت کی اپنی اہمیت ہے اس وقت بھی۔ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کی ضرورت نہیں، آج روٹھے کل چھوٹے، نہیں کرتے تو نہ کرو، نہیں پڑھتے نماز تو نہ پڑھو، اور آج یہ بات اللہ کی پوری ہو رہی ہے، بون مسلم دین سے پیچھے ہوتے گئے، ریوارڈس آگے آگے، تو ہمیشہ بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچئے کہ آپ کی جگہ کوئی بھی آ جائے گا لیکن آپ اس جگہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو اگر یاد رکھ لیں تو ہماری نسلیں اسلام کو چھوڑ چھوڑ کے باہر نہ جاتی پھریں۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ مسلمان بچے دین چھوڑ دیں؟ بس یہ آیت اسی پہ غور و فکر والی ہے۔ جب ہم نے اپنی اولادوں کو جاہل رکھا، صرف ان کو ناظرہ پڑھا کر ایک معاشرے کے ہاتھوں میں دے دیا، اور مروبیت اتنی ہوئی اور باہر سے ایسے پمپی گلیمری کلچر ملا، تو وہی ہوا جو آج ہو رہا ہے، اللہ ایسی بگڑی ہوئی اولادوں کو واپس لیا، ان کو ہدایت پہ لیا۔ اللہ مسلمانوں کا رخ اپنی طرف کرتے ہیں، مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع و خشوع کرنے والے ہیں، یعنی اپنی دوستیاں بدلو، قبلے چینج کرو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یہ مغلوبیت کا احساس ہمارے دلوں سے کوئی نکال کے پھینک دے تو کم از کم ہم سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم تو آج کہتے ہیں مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو برے، اور آپ دیکھیے وہ بڑے لوگ بھی مجرم ہیں جو بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کو برا کہتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے۔ تو کیا سیکھا؟ जाहिलियत से दूर रहने के लिए मुसलमान किन से दोस्ती करें? अल्लाह से, रसूल से और अहले ईमान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, खा वो इनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। 3 सेकंड गौर कीजिएगा, क्या आज हमें ऐसी महफिलें और रंग बिरंगी चीजें अच्छी तो नहीं लगने लग गई कि जहां दीन का वाजे तौर पर मजाक उड़ाया जाए? और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते कि ये बेअक्ल है। मदीना में कुछ लोग थे जो अजान का मजाक उड़ाते थे, उनकी तरफ इशारा। आज भी लोग अजान की आवाज ऊंची रखते हुए खौफ खाते हैं, हाँ दूसरी आवाजें इतनी हों कि कान पड़ी आवाज ना आए। आप कह दीजिए कि ऐ यहूद और ऐ नसारा, तुम हमसे सिर्फ इसलिए दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया है, जो कुछ इससे पहले उतारा गया, इस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फासिक हैं। ये अंदाज अल्लाह ताला ही इख्तियार कर सकता है कि उसकी मखलूक उसके बंदे। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा अजर पाने वाला अल्लाह ताला के नजदीक कौन है? तो बताया भी जा रहा है, वो जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की और इस पर वो गुस्से हुआ और इनमें से बास को बंदर और सुवर बना दिया, और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास से ज्यादा भटकने वाले हैं। क्या पता चला कि बंदरों की तरह सुवर भी पिछली कौमों में से कोई बनाए गए जिसका जिक्र यहाँ आ गया? और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए थे, इसी कुफर के साथ ही गए भी, और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर, आप भी जरा देखिएगा अपने इर्द गिर्द, ये कुछ तो नहीं हो रहा, अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्मो ज्यादती की तरफ और माले हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो नहायत बुरे काम है। अल्लाह हमारे मुल्कों से ये काम खत्म कर दे। हमें भी अपने इर्द गिर्द यही कुछ दिखने लगा, क्योंकि जाहिलियत है, इल्म नहीं है। इन्हें इनके आबिद और आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। इस पे तो हर वो बंदा चंद सेकंड गौर करे जिसको अल्लाह ने यह काम दिया हुआ है। आज देखिए दूसरी बातों पे बहुत बातें, लेकिन अब हराम चीजों पे और गलत चीजों पे कम ही बात होती है कि हम क्यों बुरे बने। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, नाउसुबिल्ला, नकले कुफर, कुफर ना बाशित, वरना ये जुमला कभी ना कोई पढ़े कुरान पढ़ते हुए। इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और इनके इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफर में और ही बढ़ा देता है। तो दौरे हाजिर का एक और फितना उलमाए सू, एक होते उलमाए खैर, खैर फैलाने वाले, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, लेकिन उलमाए सू कौन है जो उलमाए हक के मुकाबले पे? हक वाले उलमा क्या करते हैं? गुनाह और हराम से रोकते हैं। बस आवाजें नरम और अंदाज दिल पजीर हो जाए तो असर भी ज्यादा होगा। इसके बरक्स उलमाए सू गुनाह और हराम से नहीं रोकते, और फिर लोगों के मजमे उनके साथ जमा हो जाते हैं कि देखा ये अच्छे हैं ना, इनकी बात सुनो और जो मर्जी करो। तो उलमाए सू की पैरवी जाहिलियत की तरफ ले जाती है, और हमने इनमें आपस ही में क्यामत तक के लिए अदावत और बुगस डाल दिया। जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर और फसाद मचाते फिरते हैं, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां मुआफ फरमा देते और जरूर इन्हें राहत और आराम की जन्नतों में ले जाते। दिल में हूक उठती है इस आयत को पढ़ के। बस दफा इंसान अपना ही बुरा कर लेता है सिर्फ हसद और जाहिलियत की वजह से। और अगर ये लोग तौरातो इंजील और इसकी जानिब, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया, इसके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियानी राह की भी है, बाकी इनमें से बहुत सारों के आमाल बुरे हैं। इधर पता चलता है कि जब किसी जमीन के टुकड़े पे अल्लाह का कानून नाफिज हो जाता है तो आसमान से भी रिस्क आता है और जमीन से भी। ए रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की, और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए कि अहले किताब तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं, यानी तुम्हारी कोई औकात नहीं, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई मुकाम नहीं, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते फिरें। कब तक? जब तक कि तौरात तो इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम ना करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो इनमें से बहुत सारों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ाएगा, तो आप इन काफिरों पर गमगीन न हो। तो क्या पता चला, दौरे हाजर के फितनों का हल सुन लिया आपने? मैंने नंबर एक ईमान और तकवा लाना है, ख्वाहिश परस्ती और जाहिलियत से रोकना है खुद को, शरीयत की पाबंदी करनी है और किताब को नाफिज करना है, डूज एंड डोंट्स। बाकी हम सारे पैगामुल कुरान में ले रहे हैं, इंशाल्लाह इस बारे पे भी लेंगे वहां जाकर, क्योंकि असल चाहिए तो ये है ना, काम करना क्या, ये बताइए करूं क्या। इधर उधर की बहसों से उतार कर साइड पे रखा उन चीजों को और अमल की बातों पे माइल किया, और अब आगे खुशफहमियों का इलाज। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई भी हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो महज बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम हो जाएगा। सूरत बकरा में भी ऐसी ही आयत गुजर चुकी है। हमने बिल यकीन बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा, जब कभी रसूल इनके पास वो अहकाम लेकर आए जो इनकी अपनी मर्जी के खिलाफ थे, तो उन्होंने इनकी एक जमात को झुटलाया और एक जमात को कत्ल कर दिया। बिल्कुल यही अंदाज सूरत बकरा में पहले पारे में भी था। क्या पता चला कि जब शरीयत मर्जी से टकराती है तो लोग वो बात कहने वालों को ही रास्ते से हटा देते हैं, और समझ बैठे कि कोई पकड़ ना होगी, पसंदे बहरे बन बैठे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली, इसके बाद भी इनमें से अक्सर अंधे बहरे हो गए। अल्लाह ताला इनके अमाल को बखूबी जानता है, अल्लाह ताला का गजब है इन लफ्जों में। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि खुद मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सब का रब है। ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या है और आज उनसे मोहब्बत करने वाले क्या कहते हैं? यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नम ही है, और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ताला में शिर्क की कबाहत से बचाए। वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है, दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफर पर ही रहेंगे इन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते? अब आप देखिए पारे कैंड में बड़ी मोहब्बत से इनको दावत दी जा रही है पलटने की, और क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मसीह ने मरियम सिवा पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालदा एक रास्तबाज सच्ची औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे, यानी इंसान थे, तुम उनको खुदा कैसे कह सकते हो? आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं और फिर गौर कीजिए किस तरह से वो फेरे जाते हैं। आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है ना किसी नफे के, अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। तो कैसे एग्जेजरेट किया इन्होंने। कह दीजिए कि अहले किताब अपने दीन में ना हक गलूव और ज्यादती ना करो, और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुत सारों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए। पिछली कौमें भी गलूफ का शिकार, आज की कौम भी गलूफ का शिकार। तो क्या पता चला कि हक की इत्तबा में हद से तजावुज करना ये कैसे होता है? पहली बात क्या कि गलूफ शिर्क और गुमराही का सबब सबसे बड़ा जरिया है ये। फिर इसी तरह इमाम और दीनी कायद को पैगंबर की तरह मासूम अनिल खता समझना, ये भी जहालत का अकीदा है। फिर इन्हें नबूवत के मुकाम से उठाकर अलूहियत पर फाइज कर देना, ये भी जहालत का अकीदा। आयमे कराम की राय में हद से तजावुज कर देना भी ना समझी है। कौल और फतवे को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तरजीह देना, ये भी हद से गुजरना है। और फिर पैगंबर को खुदाई सिफात से मुत्तसिफ मानना, यानी जो अल्लाह ताला काम करता है वही पैगंबर भी कर सकते हैं, ये भी असल में हक के रास्ते में आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इससे बचा ले। بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ یہ ہے جاہلیت کی پیداوار کہ لوگوں کو برے کام کرنے دو، بھائی نہیں کون برا بنے؟ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم کے برے بنے، سب کو پتا ہے، سب کے گھر میں قرآن ہے۔ حالانکہ دیکھیے پچھلی قوموں پہ جو اللہ کی پکڑ آئی وہ امر بالمعروف چھوڑنے اور نہی عن المنکر کو نہ کرنے کی وجہ سے آئی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، ہماری اصلاح کر دے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ کے عدل ہونے کی دلیل، سب کو ایک ہی طرح نہیں رکھ دیا، دلوں کو بنانے والا جانتا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں جاہل کون ہے؟ بدعت اور غلوف سے شرک تک پہنچنے والا، شریعت کی بجائے خواہش کی پیروی کرنے والا، بٹکے ہموں کے اندھی تقلید کرنے والا، اور کتاب کے مطابق زندگی اور اس کے فیصلے نہ کرنے والا، نہ خود برائیوں سے رکتا ہے نہ دوسروں کو روکتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا پارہ 6۔ سورت مائدہ کے شروع سے لے کے اب تک ہم نے جو پڑھا اس پہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے سن لیجئے۔ پہلی چار آیتوں میں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین میں بدعت کرنا، یہ جہالت کے طور طریقے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت 5 میں غیر مسلم عورتوں کے حسن سے متاثر ہو کر ان سے تعلق رکھنا جاہلانہ عمل ہے۔ آیت 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ایک جاہلانہ کوشش تھی۔ آیت نمبر 13 کلام کو بے موقع پیش کرنا اور نصیحت کو بھول جانا، یہ دو جاہلیت بھرے عمل ہیں۔ آیت 18 یہود و نصارہ کا جاہلانہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے لاٹلے اور چہیتے ہیں، اور آیت 24 قوم موسیٰ کا جہاد سے انکار اور اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو لڑنے کے لیے کہنا ان کی جہالت کی دلیل تھی، اور آیت 33 قصہ حابیل و قابیل، حسد اور قتل، دو جہالتیں جمع ہو گئیں، اور 39 سے 34 ڈاکہ، رہزنی، چوری، غلط وسیلے اختیار کرنا، یہ جاہلانہ اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ چند جیمز لے لیجئے، سنہرے حروف، جاہلیت اور غیر اسلامی طرز زندگی کو چھوڑنا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، شریعت کی پابندی کرنا ہے، قرآن پاک کو نافذ کرنا ہے، غیر مسلموں کی دوستی اور پیروی سے پرہیز کرنا ہے، اللہ رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرنی ہے، اور فاستبق الخیرات پہ عمل کرنا ہے۔ ان فتنوں کا حل جو اس بارے میں پڑھے، جو سارے کے سارے جاہلیت کی پیداوار تھے۔ نمبر 1، جاہلیت کے تمام طور طریقوں اور رویوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب علم ہوگا تو پھر انشاءاللہ عمل بھی آئے گا۔ خواہش پرستی اور جاہلیت کے تمام طریقوں کو چھوڑنا ہے۔ ظن الجاہلیہ کو دور کرنے کے لیے سوچ میں تبدیلی لانی ہے۔ آج کا جہاد بھی یہی ہے، پرسیپشنز چینج کیجئے، اپنی نسل کو فخر دیجئے اور رشک دیجئے کہ وہ مسلمان ہے، اور غیروں سے متاثر ہونے کی بجائے وہ خود اپنے دین کو سیکھیں اور پھر خود بھی اسی چیز کے قائل ہوں گے۔ پڑھے لکھے اور دانشور مبلغوں کا کردار بہت اہم ہے، ایسے لوگوں کو بہت سوچ کر بیان دینے چاہیے۔ حمیت الجاہلیہ کو دور کرنے کے لیے تزکیہ نفس کرنا، حکم الجاہلیہ کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، تبرج الجاہلیہ یعنی بناؤ سنگھار کر کے دکھانا دوسروں کو، اس کو دور کرنے کے لیے حکمت سے تبلیغ کرنی ہے، اور اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرنا ہے۔ جاہلیت سے نکلنے کے لیے یہود و نصارہ اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو دوست نہیں بنانا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے دین سے حسد رکھے۔ دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کرنی ہے، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اسلامی شریعت کے خلاف غیر مسلموں کے جاہلیت والے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.